جو مسٹر پنو کے ہیں نا, میرے کو لگتا ہے سیریس نوٹ یہ لگتا ہے بھی شاید ان کی مینٹل ہیلتھ ہے نا, اس کا کوئی ایشو ہے. لیکن پنو صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی بیسیکلی اینٹی سکھ ہے. ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی پوری کوشش ہے مسٹر پنو کی کہ کسی طرح سکھی کو, سکھوں کی جو کریڈیبلٹی ہے ڈائسپورا میں برباد کرنی ہے. مسٹر پنو کا جتنا گروہ ہے دے آر ویری کریمنل مائنڈیڈ, دے کریمنل ایلیمنٹ جن کے جس گرودوارے میں ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, میں قبضہ بولتا ہوں جی قبضہ کیا ہوا ہے, اور اسی گرودوارے میں اس نے یہ ہمت نہیں تھی جی فریلی گونج سکے وہاں. پنو کی جو خالصتانی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ ساری فائی وائی سارے کا سارا کہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, ان کے لیے اگنور ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں بھی ایسا نہیں, سب سے زیادہ پنجاب کی دشمنی جو سکھوں کے دشمن ہے نا وہ ہندو نہیں ہے, وہ سکھوں میں ہی ہے. آپ کو میں ڈرانے کی کوشش کروں گا, اگر آپ میرے سے ڈر گئے آپ کو میں اور پریشان کروں گا, تنگ کروں گا. اگر آپ تکڑے ہو نا, آپ آگے سے کھڑ گئے تو پھر میں وکٹم بن جاؤں گا. یہ مینٹیلٹی ہے ہماری. ہم تھاپر کالج میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے گئے تھے اور اس سمے 21 اسٹوڈنٹ کو, میجورٹی آف دا ہندو اسٹوڈنٹ تھے, وہ ہندو کوئی بیچارہ ہریانہ سے گئے ہوتے اور کوئی یو پی سے گئے ہوتے, ان کو انوسنٹلی مار دیا اور بسوں سے نکال کر. جو آر ایس ایس کے دیکھ لو, آر ایس ایس کو آپ ہسٹری سرچ کر کے دیکھ لو, موقع میں 23 آف دا آر ایس ایس کے لوگ جو پارک میں شاخہ لگا رہے تھے اس کو شوٹ کر دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ پنجاب میں کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے, کوئی ایسی انسیڈنٹ کرتا ہے, یا گرپتوان سنگھ پنو جو خالصتانی باہر بیٹھ کر کوئی ایسا انسیڈنٹ کرتے ہیں, اس کا سائڈ افیکٹ ریفلیکشن سونر اور لیٹر سکھوں پہ آئے گا. اور امیجن کرو اسٹاکٹن کا گرودوارا ون آف دا فرسٹ گرودوارا ان نارتھ امیرکا ہے, جو گدر بابوں نے جو گدر موومنٹ میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کریا,
دیش کی آزادی لڑنے میں
کرتار سنگھ سرابا, اور وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کر واپس آ کر ان لوگ جہاں شہادت دی دیش کو یاد کرنے کے لیے, ان کا گرودوارے پہ آج ان کا خالصتانیوں کا قبضہ ہے. کہ گانا تھا منی بدنام ہوئی
ڈارلنگ تیرے لیے,
ڈارلنگ تیرے لیے, بی جے پی کا حال ہے. یہ بی جے پی منی ہے اکالی دل کی. کانگریس کی بارے میں آپ جانتی ہو, ٹھیک ہے نا, کانگریس بہت شرارتی ہیں اور اتنا نقصان کر کے سکھوں کا, اتنا سکھوں کا پنجابیوں کا نقصان کر کے پھر بھی پور میں باری باری پھر سرکار بنا رہی ہے.
یہ کیا ریسیپی ہے؟
ابھی جو مودی جی سرکار میں آئے ہوئے ہیں اس دن سے کتنی زیادہ وائلنس, اینٹی سکھ, نو اینٹی ہندو, اینٹی انڈیا, اینٹی آر ایس, سارا کچھ پروپوگنڈا چل رہا ہے نا. کیوں چل رہا ہے؟ اس کا ایک بڑا ریزن ہے, سب سے زیادہ جو زہر اور بھی گھول رہے ہیں نا سکھی کے پرچارک. میں تو کہتا بھی میرا گاؤں اور بھگوانت مان جی کا گاؤں لائک اٹس آن دا واکنگ ڈسٹینس, وی نو ایچ ادر فار سو لانگ, لانگ انف. امریکہ میں جاتے ہیں وہاں بھی ملتے ہیں, پہلے بھی الیکشن سے پہلے میں آتا تھا, ہمیشہ ہماری ملاقات ہوتی تھی.
بدلے نہیں الیکشن جیتنے کے بعد, سی ایم
بدل گئے,
اب بدل گئے. بھائی اور بہنوں, سکھی چہال جی اسٹوڈیو میں آئے. سر بہت بہت دھنیواد, تھینک یو فار کمنگ آن بات.
سسریکال,
اور بہت سمے سے چاہ رہے تھے کہ آپ کو انوائٹ کریں اور یہ کوئنسیڈنس ہوا کہ آج ہم مل پائے, تھینکس ٹو ویبو سنگھ. تو بتائیے سر, کیسا آپ کا آنا ہوا, کیسے بھارت میں بھرمن چل رہا ہے آپ کا, کئی جگہ گھومے, کیسا چل رہا ہے سب؟
اچھا چل رہا ہے, ہمارا ملک ہے باس.
آپ کا ملک تو یہ ہے جس کا آپ نے جھنڈا لگایا ہے.
یہ میری جنم بھومی ہے, میری کرم بھومی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, پنجاب سارے کا سارا بھارت یہ ہمارا ہے, ہمارے گرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی دھرتی ہے, ہمارا سبھیاچار ہے, ہمارے لوگ ہیں.
پنجاب یا بھارت؟
بھارت.
بھارت, وہ ایک آپ نے دیکھا انٹرویو سدھو موسے والا کا, اس میں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب یا انڈیا, تو کہتا ہے کہ پنجاب تو انڈیا ہی آتا ہے, انڈیا میں ہی آتا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی سوچ ہوتی ہے بے خوفی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو اتنی مہان لوگ, پیر فقیر پیغمبر وہاں سے پنجاب کی دھرتی میں پیدا ہوئے, تو ایسی بات کرنی آئی تھنک اٹس سیڈ, اٹ از انفارچونیٹ کوئی ایسی کچھ لوگوں کی سوچ ہو تو پنجاب الگ ہے, انڈیا الگ ہے.
تو سر آپ یہ آپ کے جو پڑوسی ہیں, یہ گرپت پتوند, کیا نام ہے اس کا, پنو,
گرپتوند سنگھ پنو,
پنو
پنو صاحب بولتا ہوں میں,
پنو صاحب کو تھوڑا سا دل کا دورہ تو آیا ہوگا ابھی کچھ جو ریولیوشن ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا میرے خلاف سازش.
نہیں دیکھو,
آپ کو کچھ بتایا انہوں نے؟
نہیں, آئی تھنک کچھ مہینے پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ مسٹر پنو صاحب کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کیلیفورنیا میں, ان کی ڈیتھ ہوگی. میرے کو بہت فون آئے, آئی وی دا فرسٹ ون ٹو کنڈیم اس نیوز کو, بھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, اور میں نے کنفرم کیا کافی. تو لیکن ایسی انسیڈنٹ جو بھی ہو رہا ہے میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں, ہاں بھی کسی آئی ڈون نو کہ ریئلٹی کیا ہے, جو تو میں جو میڈیا میں آ رہا ہے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ اس سے انفارچونیٹ. کل کو اس کی جگہ پہ میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی میرے کو مروانے کی کوشش کرے, وہ غلط بات ہے. دیکھو جی جس سبھیاچار میں ہم رہتے ہیں جہاں کوئی وائلنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. بچاروں کے مت بھید ہو سکتے ہیں, آئیڈیالوجی میری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں بھی کل میں آپ کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہوئے گی آپ میری بات نہیں مانو گے تو میں آپ کو مروانا کی کوشش کروں. نہیں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس از کنسرننگ اینڈ انفارچونیٹ.
لیکن سر جیسے وہاں پہ جو بات ہوتی ہے کہ جو پنو بات کرتا ہے وہ یہاں پہ کوئی ایئر انڈیا کے فلائٹ کو اڑانے کی بات کرتا ہے, کوئی پارلیمنٹ کو اڑانے کی بات کرتا ہے, تو ابھی تو یہ بھی آیا تھا کہ جب کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا تھا کہ اس سمے بھی دھمکی دی گئی تھی. تو ان سارے جو ویوز ہیں دس از بیسکلی ٹیررسٹ مینٹلٹی, وہی ویوز ہیں. تو اگر کوئی بھی پلوٹنگ کر رہا ہے جیسے کوئی ٹیررسٹ اٹیک پلان کر رہا ہے
بالکل,
تو پھر دین اٹ بیکمز ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ
بالکل
ٹو نیوٹرلائز دیٹ پرسن.
نو انفارچونیٹلی پیچھے ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اس سمے سوشل میڈیا نہیں تھا. جو کنشکا کانڈ ہوا وہ بھی ایسی ڈسکشن سے, ایسی باتوں سے, ایسی دھمکیوں سے شروع ہوا تھا نا, اور ایونچولی ان لوگوں نے اس کو وہ انجام دے دیا تھا. کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, اٹ واز ویری انفارچونیٹ. اور ایسی آپ کی ہسٹری میں, اور ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں, ابھی بہت لوگ زندہ ہیں جن لوگوں نے کیا تھا, تو ان کو لوگ دیکھتے ہیں. اور آج کل جیسے مسٹر پنو جیسے لوگ کوئی ایسی بدتمیزی کی بات کرتے ہیں, اٹ از اے سیریس کنسرن, اٹس اے سیریس میٹر. اینڈ میں تو آئی روٹ اے ای میل اینڈ اے میسج ٹو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, ٹو دا ایف بی آئی, ٹو دا کنسرننگ اتھارٹی کہ دس از نان سینس, دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. کیونکہ اس کا ایسا نہیں بھی, اس کو ساری کمیونٹی, سکھ کمیونٹی کو جو سکھ کمیونٹی کی حیثیت ہے اس کو بھی بہت زیادہ چوٹ پہنچے گی ان دا لانگ رن. کیونکہ اگر ایسی بات کرنی ہے, ایسی بات کون کرتے تھے پہلے, سوچتے تھے بھی وہ کوئی طالبان کے لوگ کرتے تھے جو اسلامک جو ٹیررسٹ ہیں, جو ایسی آرگنائزیشن ہیں القاعدہ والے ہیں, وہ ایسی دھمکیاں وہ دیتے تھے. اب پنو صاحب انٹرسٹنگلی امریکہ میں بیٹھ کر جو ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں.
یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ فائیو آئیز اور جو پوری ڈیموکریسی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں, تو یہ کرتے کیوں نہیں ہے کہ چاہے آپ کینیڈا لے لیجئے چاہے یو ایس لے لیجئے, مطلب اس کا سمپل تو ایک جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مطلب وہاں کی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں کیا, کیونکہ اس طریقے کی باتیں اور پروتساہن تو انہیں کو کرتا لگتا ہے کہ اگر مان لیجئے کل کو کوئی بولے کہ ایئر کینیڈا مطلب یا کینیڈا میں کوئی فلائٹ ہے یا یونائٹیڈ کو اڑانا ہے, کوئی ایسی بات کرے تو مطلب آپ سوشل میڈیا پہ پریزیڈنٹ کو تھریٹن کر دیجئے تو آپ کے
سیکرٹ میں آ جائیں گے.
ہاں سیکرٹ سروس آپ کے گھر پہ آ جائے گی. تو یہ اس کو اتنا کھلا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک لیک بھی پڑھا تھا جس میں اب وہ سورسز کو کوٹ کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ مطلب اب آور این ایس اے انہوں نے یہ بولا ہے, کمیونیکیٹ کیا ہے یو ایس کو کہ بھائی اگر ہم ایکشن نہیں لے رہے ہیں پنو کے خلاف تو وہ اس لیے کیونکہ ہی از این ایسٹ آف دیئر انٹیلیجنس ایجنسیز. تو یہ کیوں مطلب جو ٹیررزم کے خلاف اتنا مطلب بولتے ہیں اتنے پرکھر ہو؟
دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں. امریکہ میں جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے وہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ بھی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کسی کو بھی ہے. ایون کہ کل کو میرے کو, میں مسٹر بائیڈن ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے خلاف بھی میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوں لافلی. جو بھی ہے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن لاؤ کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی آدمی لائن کراس کرتا ہے پھر اس کے بعد, جو آپ نے دیکھا ہوئے گا پیچھے جو کیپیٹل بلڈنگ پہ کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ان لوگوں دیکھو ان کی جو کنوکشن ہو رہی ہے, کسی کو 20 سال کی سزا ہو رہی ہے, کسی کو 15 سال کی ہو رہی ہے, کنوکشن ہو رہی ہے نا, چل رہا ہے نا. لیکن اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ, ایون صرف میرے لیے نہیں, میں تو دیکھو مسٹر پنو کے جتنی جو کمپین میں نے چلائی ہوئی ہے سنگل ہینڈلی, اور دوسرا کوئی آدمی بھی دکھا دو نارتھ امریکہ میں کوئی نہیں ہے सिंगल हैंडली ओपनली जो भी मैं बात आज के आपके स्टूडियो में करूँगा, यही मैं बात हमारे गुरुद्वारा साहब में भी करूँगा, कम्युनिटी में करूँगा, सिख कम्युनिटी में करूँगा, पंजाबी कम्युनिटी में, पब्लिक डोमेन में करूँगा। इट्स वेरी कंसर्निंग जो मिस्टर पन्नू के हैं ना, मेरे को लगता है ए सीरियस नोट ये लगता है भी शायद उनके मेंटल हेल्थ है ना उसका कोई इशू है। पहले मैं मेरे को होता था भी शायद ये आदमी पता नहीं क्या करता है, क्यों करता है, कोई कहता है, अब मेरे को लगता है भी आई थिंक उसको मेंटल इश्यूज हैं, कोई डेफिनेटली उसको कोई साइकेट्रिक या किसी और को दिखाना चाहिए। मैं इवन के उसके उसके ग्रुप के कुछ लोगों को ही बोला है, इवन के SFJ के ग्रुप को, क्योंकि हम तो एंड ऑफ द डे सभी लोगों को हम मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है भी हमारा किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं होएगा, और है, लोग कहते भी हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन पन्नू साहब की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बेसिकली एंटी सिख है,
एंटी सिख
है उसमें। इस डेफिनेटली उन लोगों की पूरी कोशिश है मिस्टर पन्नू की कि किसी तरह सिखी को, सिखों की जो क्रेडिबिलिटी है डायस्पोरा में बर्बाद करनी है। उसके पीछे कौन है आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट वन, ठीक है, और सामने बहुत कुछ नज़र आ रहा है, कुछ लोग कंक्लूड भी कर रहे हैं उसके पीछे ये है वो है, लेकिन उसकी एक्टिविटी है खालिस्तान का तो एक सहारा ले रहे हैं, बाकी तो क्रिमिनल एलिमेंट है।
जो मिस्टर क्रिमिनल एलिमेंट कौन है इनके ग्रुप्स में?
मिस्टर पन्नू का जितना ग्रुप है दे आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड, दे क्रिमिनल एलिमेंट। मैं बार बार जे मैं एक बार नहीं मैं 100 बार कहता हूँ, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ और मेरे पास प्रूफ है सभी, ये क्रिमिनल एलिमेंट है, ये क्रिमिनल इनकी एक्टिविटी है, इनकी एक्टिविटी एंटी सिख है, और जो खालिस्तान का सिर्फ एक सहारा लेकर ये कोई भी बात करेगा उसको सप्रेस करते हैं, अदरवाइज इनका सिखी के साथ कोई तलकात नहीं है, इनका खालिस्तान के मूवमेंट के साथ कोई तलकात नहीं है। खालिस्तान की मूवमेंट के लिए कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा परिवार भी बर्बाद हो गए, सेक्रीफाई किए, इसके इस पर तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा आजकल। ये कहता है भी हाँ भी मैं ऐसा कर दूँ, ये हमेशा कहता है भी आपको मैं $100 दे दूँ, आप ऐसा कर दो आपको $1,000 दे दूँ, आप उसको कभी मोदी जी को गालें, कभी अमित शाह जी को गालें, कभी डोवल साहब को गालें, कभी जो MEA के मिनिस्टर हैं उनको गालें, किसको छोड़ते हैं, ठीक है ना, आप कुछ नहीं करना, ये पैसे दे दूँ। अभी ये देखो एयर इंडिया की, एयर इंडिया को थ्रेट किया, जिसने किया तभी 18 ये वो जिस तरीके से मैं उस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर सैन फ्रांसिस्को से न्यू दिल्ली आया हूँ। चिंता का विषय ये है कि मेरी खुद की स्क्रीनिंग सेकंड टाइम हुई सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में, उसमें एयर इंडिया का कोई हो नहीं है, लेकिन क्योंकि जो थ्रेट है ना जो सिखों की डेफिनेटली होगी, आई एम ए विटनेस, क्योंकि मैं कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी स्क्रीनिंग वहाँ सेकंड टाइम हुई, क्योंकि उस दिन उसने धमकी दी हुई थी भी एयर इंडिया को बाइकआउट करने की, ऑब्वियसली सो दे हैव टू टेक देयर प्रिकॉशंस, नॉट ओनली कि एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया की सिक्योरिटी मैनेज नहीं करती एयरपोर्ट पे ना, सिक्योरिटी तो लोकल अथॉरिटी करती है ना वहाँ, और मेरी इसको हुई। और ये कितनी बड़ी बदतमीजी है कि एयर इंडिया को ये बाद में कहता है, बाद में फिर ये शुगर कोट करते हैं भी, बाद में कहते हैं भी एक बार तो थ्रेट कर देंगे, बाद में ऐसे करेंगे भी हमारा मतलब ये ही नहीं था, बाद में कहता भी नहीं मैं तो उसको इकोनॉमिकली उसको चैलेंज करना है, उसको इकोनॉमिकली उसको हर्ट करना
है। लेकिन प्राइवेट एयरलाइन है
वो, टाटा की एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन है, और उसने 500 जो प्लेन है उसने ऑर्डर कर चुके हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, उसके 250 जो बड़े प्लेन हैं वो बोइंग बना रहा है, अमेरिका में बन रहा है, अमेरिका में कितनी उसको फ़ायदा है, कितनी जॉब जनरेट हो रही हैं, और 250 हैं वो एयरबस बना रहा है, ठीक है ना, फ्रांस में बन रहा है। और जे काका जी कहते हैं भी ठीक है भी शो अगर 10,000 $1,00,000-$2,00,000 का उनको नुकसान हो जाएगा, दैट्स नथिंग, पर प्रॉब्लम क्या है भी सिखों पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना भी, हाँ क्योंकि कुछ लोगों ने, सिख लोगों ने उनका नाम आया था, मैं नहीं कहता भी उन लोगों ने किया या नहीं किया, उनका नाम आया था, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी कोर्ट से, वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की कोर्ट ने कुछ लोगों को कन्विक्ट किया था ना। अगर ऐसी कोई बदतमीजी कोई बात करेंगे जैसे मिस्टर पन्नू करता है, ऑब्वियसली से मैटर ऑफ कंसर्न। दूसरी बात ये करता है भी ये लोगों को कहता है भी अपने आप मर जाओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इसको कुछ ना हुए, और लोगों को कहता है आप हमेशा सिक्योरिटी लेकर घूमता है। वैनकूवर में भी रेफरेंडम हुआ था, वहाँ भी इसके पास सिक्योरिटी थी, और इसी के गुरुद्वारे में जिनके जिस गुरुद्वारे में इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, मैं कब्जा बोलता हूँ, ये कब्जा किया हुआ है, और उसी गुरुद्वारे में इसने ये हिम्मत नहीं थी ये फ्रीली घूम सके वहाँ, और अपने लोगों में, और वहां भी सिक्योरिटी है, लेकिन वहां तो अपनी जान को तो इसको डर लगता है, खतरा है, लेकिन ये कहता है भी कोई जहां जाकर इंडिया की पार्लियामेंट को झंडा चढ़ा दो, कोई कहता है मोगा के वाशिंगटन जो जो डीसी है, मोगा के डीसी उस उसके उसकी ऑफिस पे झंडा चढ़ा दो, जो बड़ी बड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा बदतमीजी की बात करता है ना। प्रॉब्लम यही है, ये कहता भी मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। प्रॉब्लम ये है भी इसकी, आपने क्वेश्चन पूछा था भी कैसे वायलेंट है, आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल, क्योंकि डिटेल में मैं जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं होता है। लास्ट टाइम जो मिस्टर मनजीत सिंह जी के थे इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अमेरिका में जूबा सिटी के गुरुद्वारे में, इनसाइड द गुरुद्वारा उसकी पिटाई की थी, उस पर कातलाना हमला किया गया था इनके गुंडों दल ने, लाइक मोर देन 20 ऑफ दीज गुंडा दल, मैं उसको गुंडा दल बोलता हूँ, मैं ना SFJ नहीं बोलता, ना इसको खालिस्तान का ना बदनाम नहीं करना चाहते हम, ये गुंडा दल जो SFJ जो गुरबतवंत सिंह की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने गुरुद्वारा के अंदर एक सरदार की पिटाई की है, सिख की पिटाई की है, ठीक है ना, और गुरुद्वारा के वो भी बेअदबी है ना, ठीक है, और क्यों, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है, इनको कोई चैलेंज नहीं करता, इनडायरेक्टली ये कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को भी थ्रेट करते हैं भी, इनके जो हमारे साथ कोई लफड़ा करेगा, हमने मनजीत सिंह जी का ये किया। उससे पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी इलेक्शन लड़ने से पहले अमेरिका में गए थे, कनाडा जा नहीं सके, उस समय फ्रेजनो मेरे से, मैं रहता हूँ सैन होजे रहता हूँ, 2 घंटे का रास्ता है फ्रेजनो का, वहाँ उन लोगों ने कम्युनिटी हॉल ने कैप्टन अमरिंदर का शाम का प्रोग्राम था, एंड आई वाज आल्सो देयर। उस समय भी इन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत गाली गलौज, बहुत जो इतनी गालियां निकालते हैं कि आपकी अपनी फैमिली को, बच्चों को आप सोच नहीं सकते भी, ये फेस नहीं कर सकते भी, इतने गिर सकते हैं, जो गिरे हुए हैं क्योंकि क्रिमिनल आदमी है ना, जो गुंडे लोग हैं। और उस समय कैप्टन अमरिंदर पे भी अटैक हुआ और यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है और मेरी पिक्चर उसमें है, एंड आई वाज द वन जिसने कैप्टन साहब को पकड़ कर उसके रेंज रोवर में बिठाया और वहाँ से चले गए। उसके बाद व्हेन आई वेंट बैक एंड दे हिट मी विद द लाइक काफ़ी बड़ा पत्थर था, ऑन दैट नाइट आई वाज एडमिटेड टू द सेंटा क्लारा काइजर, और मेरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, क्योंकि 4 o'clock इन द मॉर्निंग मेरे सर की वो सारी MRI करवाई थी, क्योंकि मेरे साथ वो जैसे होता ना भी कोई ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग ना हो, ये इनकी क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये इनकी एक्टिविटी वायलेंट होती है। दूसरा बात आगे आ जाओ, अभी इनके ग्रुप के आदमी, इन्हीं के ग्रुप के SFJ के ग्रुप, जो खालिस्तान रेफरेंडम की बात करते हैं, इनके ग्रुप के आदमी ने अभी 2 हफ्ते पहले क्या किया है, जो ग्राउनी हरकत की है वहाँ एबर्सफोर्ड है कनाडा में, वहाँ एक ब्रिगेडियर रैंक के एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर,
जो अपने फादर के साथ आए थे या हाँ, उनके अपने, फादर अपने
नहीं वो अपने बेटे के साथ हाँ। और नूह के साथ और कुछ छोटा सा बच्चा था, गुरुद्वारा में आए थे, जहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट ने आउट ऑफ द वे जाकर उन लोगों के जो होता है ना सर्टिफिकेट होते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट होते हैं, वो टेस्टेड करवाने के लिए आए थे। उन लोगों को क्या गालियां निकाली गुरुद्वारा साहब के अंदर, गुंडा कर दिया।
वीडियो है
ना, मैं तो नहीं कह रहा ना अपनी तरफ से, मैं तो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में पड़ा, मैं तो कहता हूँ सिखों को, सिख कम्युनिटी को पता चलना चाहिए भी, आई मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, मैं किसी हिंदू को या इंडियन को या किसी थर्ड पार्टी को कोई खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा ऐसी बात करके, मैं तो कहता भी ये सिखों का इशू है, बेसिकली ये एंटी सिख है। उसके बाद पीछे आ जाओ, खालिस्तानियों को कहते हैं ना भी ये हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, दिस एंड दैट। अब मैं खालिस्तानी इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ, इससे पहले तारा सिंह हेयर थे, एडिटर थे इंडो कैनेडियन न्यूज़पेपर के कैनेडा में, वो खालिस्तान के खिलाफ लिखते थे, उसको पहली बार उस पर अटैक हुआ, उसको पैरालाइज किया गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद उसके घर में घुसकर उसका मर्डर किया। जी मैं नहीं कह रहा, जो आप सर्च करके देख लियो तारा सिंह हेयर कौन थे, मीडिया को नहीं छोड़ा। उसके बाद आप देख लो मिस्टर पुरेवाल थे, तरसेम सिंह पुरेवाल, साउथ हॉल में यूके में उन पे अटैक किया, उनका मर्डर किया गया, साउथ हॉल में किया गया, क्योंकि मीडिया में वो पॉजिटिवली वो सिखों के बारे में, सिखी के बारे में इनको चैलेंज करते थे भी नो, जो खालिस्तान का जो 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 गुंडे लोग हैं, जो खालिस्तान की दुकानदारी है, जो खालिस्तान का धंधा है, ये सिखी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सिखी।
देओल साहब के ऊपर अटैक हुआ,
हाँ जी
देओल साहब के ऊपर अटैक हुआ,
देओल साहब के, हाँ जी हाँ देओल साहब वहाँ हुआ इन पे,
बलराज देओल,
हाँ बलराज देओल जी के, ये हुआ था ब्रैम्पटन में, ब्रैम्पटन में ही थे, सच ए नाइस गाय, उसकी इतनी नॉलेज, इतना पॉजिटिवली लिखता था, सो दैट क्योंकि ऐसे लोगों की क्यों जरूरत है, बलराज देओल के जी जैसे लोगों की, क्योंकि वो कम्युनिटी को वो अवेयर करते थे भी नहीं इन इन चीज़ों से,
इंटेलेक्चुअल
है, उसको उसको उस पर अटैक किया, ये हो गया। और आगे आ जाओ, अभी जो न्यूजीलैंड में हरनेक सिंह नेकी है, हरनेक सिंह नेकी को 2 साल पहले ऑलमोस्ट उसको मारकर चले गए थे, तीन लोग थे, ठीक है, 2 साल के बाद अभी उन 3 लोगों को कन्विक्शन हुई है, 1 साल को, एक को आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हुई है, लाइक मोस्टली लाइक मोर देन 8 ईयर जेल हुई है उन लोगों को, ठीक है ना। और उस आदमी को अपनी तरफ से ये मारकर चले गए थे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो एंटी खालिस्तान को, जो खालिस्तान को एंटी नहीं करता था वो, अरे बिल्कुल सही बात करता था भी, ठीक है ये जो इनका जो खालिस्तान का ये धंधा है ये हमारी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है, वो सही सच की आवाज़ उठा रहा था।
ये धंधा
नहीं नहीं, अब देखो अमेरिका में अटैक, कनाडा में अटैक, न्यूजीलैंड में अटैक, और उसके यूके में अटैक, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ था जब रेफरेंडम में, रेफरेंडम करवा रहे थे उस समय, किसी हिंदू मंदिरों पे और हिंदू लड़कों पे अटैक किया था, ये देख लो 5 हो गए ना, इसको बोलते हैं 5 आई।
5 आई का कॉन्सेप्ट ये है क्या,
ये 5 आई वो हमेशा करते हैं ना,
जिनकी दोनों आंखें बंद है,
हाँ जिनके सब कुछ बंद, इनके लिए जब पन्नू की जो खालिस्तानी इनकी एक्टिविटी होती है तो उनके लिए ये सारी 5 आई सारे का सारा के शट डाउन होता है, इनके लिए इग्नोर होता है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, मैं कहता हूँ भी मैं क्यों इनके खास आवाज उठाता हूँ, मेरा कभी दी रियल सुखी चहल मेरा वो हैंडलर है ट्विटर का, उसका मैंने जो टाइटल भी लिखा हुआ ना, मैंने लिखा है द एलओपी ऑफ द फिक्टिशियस खालिस्तान, मेरा टाइटल है वो, क्यों है भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जो इनका हवा में खालिस्तान बनना, मैं पहले मैं डिक्लेयर चुका हूँ भी मैं बनूंगा आपकी अपोजिशन का बनूंगा, क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन नहीं कर रहा, मैं तो पब्लिक डोमेन में रख चुका हूँ। प्रॉब्लम ये है जो 5 आई के जो 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 इनको जो इनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, सारा कुछ गुंडागर्दी हो रही है ना, किसके खिलाफ हो रही है, वो ज़्यादा इंडिया के खिलाफ हो रही है, बेसिकली क्या वो सिखों के खिलाफ हो रही है, सिखी को सबसे बड़ा नुकसान होएगा उसका, सिखों को, हमारे यूथ को, सिखों के यूथ को रेडिकलाइजेशन हो रही है। अब इसी में क्या आता है, इसी में एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आवाज आएगा जो 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 आप लोग
तो
अक्सर पूछते हैं,
बिल्कुल, कि ये जब आप कह रहे हो
हाँ?
कि और बहुत सारे लोग फील भी करते होंगे कि भाई ये तो अगर आप सिक्की के खिलाफ हैं
बिल्कुल,
तो फिर सिख कम्युनिटी चुप क्यों है,
एग्जैक्टली आ गए ना उसी जवाब पे आ गए, सिख कम्युनिटी इसीलिए चुप है जो 99 कह सकता हूं मैं, डायस्पोरा की बात करता हूँ, मैं सारे डायस्पोरा की बात करता हूँ, आउट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है ना, वो क्यों चुप है, क्योंकि वी हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री, जो 1980 से जो पंजाब में टेररिज्म आया था उस समय लोगों ने क्या क्या संताप हंडाए हैं, वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हमने भी देखा है क्या क्या अत्याचार हुए हैं, किन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाई किया, किन लोगों ने तबाही होगी, और उन लोगों ने उस समय उसकी आड़ में कुछ लोगों ने अपनी पूरी दुकानदारी चलाई है, अपने पूरे बिजनेस भी खड़े कर ले, लेकिन कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए, और लोगों को यूज किया गया, किसी को बिट्रे किया गया, दिस एंड दैट, के लोग कहते भी बात कर भी बहुत लोग उस समय डायस्पोरा में चले गए थे, बाहर की दुनिया में चले गए थे, ऐसा नहीं भी उसको सिर्फ पंजाब पुलिस का डर था, हमारे पंजाब में भी ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा पंजाब की दुश्मनी जो सिखों के दुश्मन है ना, वो हिंदू नहीं है, वो सिखों में ही है, ये भी बात याद रखना, जो ज्यादा सिखी का जो ज्यादा नुकसान करेगा वो हर कोई आदमी नहीं करता, आज पंजाब में डेराबाद है, और डेरे के जितने भी जो हेड हैं वो जट सिख हैं, ठीक है ना, और जितनी गुंडागर्दी होती है, जितना ड्रग का काम होता है, जितनी गलत काम होते हैं उसमें ज्यादा पकड़े जाएंगे तो वो जट सिखों के होंगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वो मेरे को किसी ने बताया, विच इज़ वेरी वेरी शेमफुल, कि देखो जो पंजाब में जो लड़की का होता है, जब आजकल हरियाणा भी होता है लड़की को मार देते हैं, वो लड़कियाँ नहीं चाहिए, उसमें भी पंजाब का बड़ा नाम आता था, ड्रग में बड़ा नाम आता है, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू वर्क टूगेदर, इंस्टेड ऑफ मैं आपको ब्लेम करूँ भाई ये हिंदुओं ने कर दी या किसी और ने कर दिया, दिस इन दैट, नो, ये चीजों, लेट्स कम बैक टू द अभी जो इसका जो बात कर रहे थे, इसीलिए
क्यों नहीं है,
इसीलिए बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास, अब आपको पता चल गया ना जो मैं आप 8 साल 10 साल पहले कह रहा था, लोकल स्टेट की सपोर्ट है, वो कुछ नहीं कहते इनको, ठीक है इनको इनको लाइसेंस दिया है भी, आप कुछ भी बोलो, अगर जी के को किसी ने कन्विक्ट किया, जीरो कन्विक्शन है, ठीक है ना, सारा कुछ। और जहां इतने मर्डर हुए हैं, इतनी जो बलराज देओल जी को जिन लोगों ने अटैक किया, किसकी कन्विक्शन हुई है? कुछ नहीं हुई है। लोग डरते हैं, लोगों में सहम है, लोग जहां से कोई अच्छे कैरियर बनाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं वहां मेहनत करके, अच्छा अच्छा उन लोगों ने बहुत अच्छे सेट हुए हैं,
वो नहीं चाहते कि इन सब चीजों में लफड़ों में पड़ना।
ये लोग हमारे गली मोहल्ले के कोई ऐसे गुंडे होते थे, पंजाब में भी होते हैं, ये कहते भी अब प्रॉब्लम ये होगी, ये इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर इनको लगता है भी सरकार भी कुछ नहीं कहती, और सरकारों का भी कुछ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बिना मतलब इंटरेस्ट तो नहीं कुछ करती ना। जो आज अब लेटली आपने पीछे देखा है, कनाडा का साइड पे देखा है, और डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, जो विच इज़ वेरी वेरी लाइक मेरे को दुख लगता है ना, एक तो हमारा यूथ रेडिकलाइज हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू जो जैसे चल रहा है, बहुत यूथ जो रेडिकलाइज होएगा उसको रियलिटी नहीं पता, ठीक है ना, उसको जो पढ़ाया जा रहा है जो आपने टेक्स्ट बुकों में या आपकी हिस्ट्री में तोड़ मरोड़ कर, भी जे भी हमारे दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है,
बीजेपी तो वही पाकिस्तान वाली बात हो गई ना,
पाकिस्तान का एजेंडा है ना, वो तो दुश्मन है, उनको तो एजेंडा है, पाकिस्तान के बारे में तो कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान से कितनी ड्रग पंजाब में आ रही है उसके बारे में कोई भी खालिस्तानी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा।
नहीं, वो तो मैंने तो ऐसे सुना है, जो कमेंट्स जो हम देखते हैं उसमें तो ये कहते हैं कि ये आ वहां से रहे लेकिन सप्लाई ये कर रहे हैं दिल्ली वाले, तो मतलब हर कोर दिल्ली में ब्लेम आ रहा है।
देखो जो बॉर्डर से आ रही है ना, जो पंजाब में बिक रही है, वो कोई दिल्ली से जाकर कोई हिंदू तो नहीं बेच रहा ना, वो तो पंजाब का कोई आदमी बेच रहा होगा ना, बेचने वाले का और बकाने वाले का भी वो सभी का एक नेक्सस है।
लेकिन ये एक बहुत आम हो गया है, जैसे हर चीज पाकिस्तान में ब्लेम होती है ना कि राणे की है,
पहले पाकिस्तान
उसी तरीके से
पहले होता था, पहले पंजाब में एक 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 कहावत है भी, पहले होता था भी ये विदेशी मुल्कों की साजिश है, पाकिस्तान के होते थे, उसके बाद फिर अकाली दल ने फिर थोड़ा सा एंटी कांग्रेस एंटी इंदिरा गांधी नैरेटिव बिल्डअप किया, जो वो कहते भी ये इंदिरा गांधी की चाल है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब कोई भी इशू हो जाए ये कहेंगे आरएसएस की चाल है, और इंटरेस्टिंग ये है भी आरएसएस ने, मैं बहुत लोगों को मिला है इसलिए मेरी क्यूरियोसिटी हो भी, देखो तो सही ना भी आरएसएस की चीज क्या है, मैं इनकी लीडरशिप को मिला बहुत लोगों को वगैरह, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी पैशनेटिंग, कि जैसे 100 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके पैरेलल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, और उसको कंपेयर करके देख लो, इन लोगों की डेडिकेशन देख लो, आज सरकार बनाकर देश चला रहे हैं, और श्रोमणी कमेटी की देख लो सिचुएशन क्या, अभी एक फैमिली की एक ऑर्गेनाइजेशन होकर बैठ गई है,
और रिलीजियस विंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी,
बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि किसी को नुकसान करना, दोष देना भी, हाँ पंजाब में कुछ भी हो गया वो कहेंगे जी इसके पीछे आरएसएस है,
कोई मतलब आत्म मंथन तो है ही नहीं ना, सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं है,
विक्टिम बन दो ना, फिर विक्टिम मेंटेलिटी है ये हमारे, ये भी बहुत है, हम आपको मैं डराने की कोशिश करूंगा, अगर आप मेरे से डर गए आपको मैं और परेशान करूंगा, तंग करूंगा, अगर आप तकड़े हो ना, आप आगे से खड़ गए तो फिर मैं विक्टिम बन जाऊंगा, ये मेंटेलिटी है हमारी, ये है, ये मैं देखो हम बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है आने वाले दिनों में जो सिचुएशन डायस्पोरा में, क्योंकि पंजाब में उसका रिफ्लेक्शन आता है, पंजाब में खालिस्तान की ना की कोई चीज़ नहीं है, मैं बिना सिक्योरिटी से खालिस्तान के लोगों को पूछ रहा हूँ, पंजाब के लोगों को खालिस्तान के बारे में पूछ रहा हूँ, वो कहते भी वो मेरी तरफ देखते हैं भी ये इसको क्या हो गया, यहाँ खालिस्तान का कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है भी खालिस्तान का कोई 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 नाम नहीं लेता, वहाँ भी फ्रिंज एलिमेंट हैं, कुछ लोगों के साथ पुलिस का बहुत तशद्दुद हुआ है, इनजस्टिस हुआ है पंजाब में, नो डाउट, उसके वजह से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान की डेमोक्रेटिकली आप खालिस्तान की बात कर सकते हो, हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान का संविधान इजाजत देता है, सिमरनजीत सिंह मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो खालिस्तान की बात करता है, ठीक है वो डेमोक्रेटिकली करता है, वो पार्टिसिपेट भी करता है, जहां इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वो सौ भी खाता है, लेकिन ये लोग कहेंगे खालिस्तान की मिस्टर पन्नू बात करेगा, लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है, कभी भी इनकी ये हिम्मत नहीं है भी जो लाहौर का इलाका था, जो महाराजा रणजीत सिंह का इलाका था, क्योंकि बेसिकली तो खालिस्तान की राजधानी है, वो तो लाहौर होनी चाहिए, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माई बाप रावलपिंडी में बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकेगा, उनको कोई अगर वो कहेंगे तो कल को फिर और कोई परेशानी होगी। इसीलिए ये जो झंझट है, ये जो दुकानदारी है, जो हमारे सिखों की, गुरुओं की, पीरों की, फिर फकीरों की इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानियाँ करके सिख कम्युनिटी की इतनी बड़ी हैसियत है। आई एम ए सिख, ठीक है, आई एम प्राउड टू बी सिख। आप हिंदू हो, आप जाट हो, ठीक है ना, अगर हमारी हिस्ट्री में तो कोई, अब थोड़ा पीछे चले जाओ आप देखोगे शायद हमारा रिलेशन, हम एक ही जगह से आए हुए, ठीक है ना, लेकिन नाउ आई एम ए सिख, आई एम प्राउड टू बी सिख, लेकिन हमारा तुम्हारा जो रिलेशन है, इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये शक्तियाँ हमेशा तोड़ने की कोशिश करेंगी, और ये तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। इसकी वजह से जो 100 साल से ज़्यादा डायस्पोरा में, अमेरिका कनाडा में लोगों ने मेहनत करके एक हमारा एक क्रेडिबिलिटी बिल्डअप की थी, हमारी रिस्पेक्ट थी सिखों की, जिनका 125,000 में एक ही पता चल जाता है सिख आ रहा है, उसको बहुत बड़ा थ्रेट है, उसको बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इन लोगों की वजह से जो क्रिमिनल एलिमेंट में सिक्स फॉर जस्टिस के गुरुप्रंथ सिंह पन्नू और उसकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं भी मैं किसी और की हवा में बात कर रहा हूँ, इन लोगों की वजह से सिखों को और गुरु साहब की सिखों को बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि ये गुंडा एलिमेंट है, और गुंडा एलिमेंट अपना एक खालिस्तान का सहारा लेकर, और पीछे अपनी जो भिंडरांवाला जी की, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की पिक्चर लगा लेते हैं और हर एक चीज़ को शट डाउन करते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द जो मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी है वो डर चुकी है, वो कहते भी नहीं, हमने इस लफड़े में नहीं पड़ना, हमने पंजाब में बर्बादी देखी है, हम और कोई पंजाब ज़्यादा बर्बादी नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए उसका चुप होना ज़्यादा ज़रूरी है। और इन बिटवीन उसके बाद वो कांग्रेस आ गई थी, कांग्रेस ने सिखों के पे कितना तशद्दुद किया,
ये दो तीन नैरेटिव हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक तो ये कांग्रेस वाला है, सारी जाति जो कहते हैं 84 वाला
बिल्कुल
कांग्रेस ने किया, वो तो हिंदू सिख भी नहीं था ना, ये तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता वर्सेस सिख था दिल्ली में,
बिल्कुल
वो हुआ। उसके बाद जो भी, उसके बाद तो सरकार इलेक्ट कर दी फुल मेजोरिटी में पंजाब में कांग्रेस की,
बिल्कुल,
और कितनी बार आई है, और ये बीजेपी की तो कभी सरकार ही नहीं रही,
नहीं हो सकता है, जैसे कहते हैं भी आरएसएस की चाल हो
तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डाउट है सर,
बदतमीजी की हद जहां से गुजरती होती है
कि भाई कांग्रेस ने क्या, उसकी तो सरकार बना देते हो।
ये कहते हैं कांग्रेस की मिसेज गांधी इतनी पावरफुल, उसकी मेजोरिटी थी, ये कहते भी इनके पास 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो आडवाणी जी थे, जो वाजपेयी जी थे, आई थिंक एक और, 3 लोगों ने प्रेशर डाला, उसकी वजह से दरबार साहब पे अटैक हुआ। जिनका नैरेटिव देखो भी, ये भी आरएसएस ने करवा दिया, जो दरबार साहब पे अटैक किया वो भी आरएसएस ने करवा दिया, क्योंकि उसने बुक लिखी,
इतनी भी शक्ति नहीं थी कि 2-3 सीट से ज्यादा जीत सके 84 में।
नहीं, आडवाणी जी ने बुक लिखी, वो बुक में शायद एक चैप्टर में वो लिखा भी हमने कोशिश की, हमने, क्योंकि ही इज पॉलिटिशियन बहुत कुछ कहता भी, हमने कोशिश की, क्योंकि ही इज हिंदू, एज ए हिंदू एंड ही हैज ए राइट टू डिफेंड हिज सोसाइटी, क्योंकि हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा था इट इज हॉरिबल, मैंने देखा है पंजाब में, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मेरे सामने मेरे बहुत लोग, मेरे जानने वाले, मेरे रूममेट जैसे जो मेरे गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे रूममेट की डेथ हुई है, और जो हम पार्टिसिपेट करने गए थे लुधियाना, क्योंकि देर वॉज ओनली 3 इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में उस समय, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक पंजाब में थापर इंजीनियरिंग कॉलेज था, और तीसरा चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था। मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2nd ईयर स्कूल का स्टूडेंट था, हम थापर कॉलेज में वो पार्टिसिपेट करने गए थे, और उस समय 21 स्टूडेंट को, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू स्टूडेंट थे, वो हिंदू, कोई बेचारा हरियाणा से गए होते और कोई यूपी से गए होते, उनको इनोसेंटली मार दिया, और बसों से निकाल कर, जो आरएसएस के देख लो, आरएसएस को आप हिस्ट्री सर्च करके देख लो, मोगा में 23 ऑफ द आरएसएस के लोग जो पार्क में शाखा लगा रहे थे उसको शूट कर दिया, उनका क्या कसूर था, और आरएसएस के अभी भी उनको कितने लीडरों को बाद में भी मारा गया, ठीक है ना, और ये कहते हैं भी हाँ सारा कुछ जो कुछ भी किया है वो आरएसएस ने किया है, बीजेपी के ने, उस समय उनका कोई वजूद नहीं था, कोई उनके पास पावर नहीं थी, वो तो खुद भी आरएसएस की, वो कांग्रेस उनको कितना सप्रेस कर रही थी, और ये नैरेटिव बनाते हैं भी जो आडवाणी जी ने लिखा एक लाइन लिख दी एक चैप्टर ने भी, उसकी वजह से पंजाब में जो दरबार साहब पे अटैक हुआ और पंजाब, अब दरबार साहब की बात आ गई, मैं कहता हूँ भी मिसेस गांधी ने जो भी किया, जो दरबार साहब पे अटैक हुआ, दैट वाज द ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उसके बहुत 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 और भी कोई ऑप्शन हो सकते थे, स्पेशली जो टाइम चुना, जो डे चुना, उस समय इतने लोग आए हुए थे, इनोसेंट लोगों का मारे जाना, हमारे दरबार साहब को अटैक होना, स्पेशली अकाल तख्त पे अटैक होना, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, दैट इज़, वो कभी ना बोल सकते हैं और ना बोलना चाहिए, और ना बोलना, कभी बोलना नहीं चाहिए, और मैं कभी भी नहीं बोलूँगा भी एज ए सिख आई, मैं कभी भी बोलूँगा और ना ही कभी माफ़ी के काबिल है, जो इतना बड़ा ब्लंडर है वो माफ़ी के काबिल नहीं। चलो ठीक है, उसका जो खमियाजा था, जो उन लोगों पार्टी,
लेकिन आप देखिए ना उसके बाद जो वायलेंस की साइकिल शुरू होती है पूरे पंजाब में, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ?
सिख कम्युनिटी का हुआ। बिल्कुल हुआ,
आधे बाहर चले गए, आधे अभी जो इतना फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया जिसकी वजह से ड्रग्स सोसाइटी ब्रेकडाउन हो गया।
बिल्कुल, वो तो मतलब जो इंटेलेक्चुअल आदमी थे उस समय भी लोग हमारे जो हमारे प्रोफेसर कहते थे, हमें बताते थे, क्योंकि हमें तो अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, स्टूडेंट थे, वो कहते भी नहीं बेटा जो आप जो चल रहे हैं आजकल, ये हमारे आपके सामने आएगा आने वाले 10 20 30 साल के बाद देखोगे, पंजाब की बर्बादी की नौ है, जो शुरुआत हो चुकी है, जो फाउंडेशन शुरू हो चुकी है इस टाइम पे, ये अब पंजाब बर्बादी की तरफ जाएगा और जा रहा है। प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है भी मोर देन 50% जो सिखों की पॉपुलेशन है वो तो पंजाब के बाहर रहती है। अगर पंजाब में कोई ऐसी बदतमीजी करता है, कोई ऐसी इंसिडेंट करता है, या गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी बाहर बैठकर कोई ऐसा इंसिडेंट करते हैं, उसका साइड इफेक्ट रिफ्लेक्शन सूनर और लेटर सिखों पे आएगा।
नहीं, इमेज में तो ऑलरेडी आ गया, अगर आप दो साल पहले अगर आप इंटरनेट
नहीं,
को
मैं इसको देखो इमेज में, एज ए सिख मैं सोचता हूँ अगर ये रेफरेंडम करवाते हैं, ठीक है ना, रेफरेंडम का, ये देखो पहली बात तो जो रेफरेंडम का जो बदतमीजी है इनकी, जो खालिस्तान की बात करते हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद द सिख रिलीजन, नथिंग टू डू विद द गुरु साहब, नथिंग टू डू विद द गुरुद्वारा। और इन लोगों ने वैनकूवर में जो पहले मिस्टर निज्जर की डेथ से पहले जो रेफरेंडम करवाया था, ठीक है ना, और ये भी इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये 5 IM होते हैं ये सारे के सारे रेफरेंडम, ठीक है, और रेफरेंडम वहां हुआ, ये पहले इन लोगों ने कोशिश की कि स्कूल में कराया जाए। इमेजिन करो, क्योंकि आई वाज द वन हु रोट ए लेटर एट द टाइम, जो सारा मीडिया में कंपेन चलाई भी नहीं, दिस इज अ ब्लंडर यू आर डूइंग, कैनेडियन गवर्नमेंट को लिखा, यू आर डूइंग द ब्लंडर, एक दिन ये सांप आप पाल रहे हो ना, ये आपको काटेंगे, जो आपके बैकयार्ड में आ रहे हैं ना, ये डेफिनेटली इनके गले की हड्डी बनेंगे, अमेरिका के भी बनेंगे और कनाडा के भी बनेंगे सूनर और लेटर, ये रियलिटी है। आज नहीं बनेंगे, आज तो इनको लगता है भी नहीं इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एवेंचुअली ये बनेंगे। उस समय रेफरेंडम इन लोगों ने होस्ट करने की कहा कि स्कूल में, जहां बच्चे छोटे आते हैं, इमेजिन करो स्कूल में गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, वहां जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है, जो वहां की एजुकेशन मिनिस्टर है, रचना सिंह है, ठीक है ना, उसका हस्बैंड भी वो प्रो खालिस्तानी है, मेरे साथ बहुत लफड़ा हुआ है उसका, और उसके बाद फिर मैंने ट्विटर पे काफ़ी कुछ लिखा, उसने भी इजाज़त दे दी इनको। इमेजिन करो भी कहाँ कहाँ इनके इनकी सेटिंग है, उससे इजाज़त लेकर रेफरेंडम स्कूल में करवा रहे थे, फिर लोकल अथॉरिटी, हमने आवाज़ उठाई, उसके बाद लोकल कम्युनिटी या उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, ये तो बदतमीजी है, स्कूल में रेफरेंडम करवा रहे हो, स्कूल में रेफरेंडम करवा रहे हो, तो जो पोस्टर थे, पोस्टर में AK-47 की पिक्चरें लगी हुई हैं, वायलेंट को ग्लोरीफाई कर रहे हो बच्चों के स्कूल में, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये रेफरेंडम स्कूल गुरुद्वारा साहब में करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं जो बात कह रहा हूँ एज ए हिंदू, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपके व्यू के को भी एजुकेट कर रहा हूँ, और ये गलती नहीं करना, अगर उससे पहले कुछ दिन पहले इन लोगों ने मंदिरों के रास्ते रोकने शुरू किए,
हाँ वो भी आया था वीडियो
है ना, मैं तो नहीं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और मंदिरों पे उसको मंदिरों के कोई प्रवोक करने की कोशिश की, ठीक है ना, अगर ये एक पॉलिटिकल रिलीजियस तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है ना, ये तो दुकानदारी है, ये रेफरेंडम की, ये गुरुद्वारा में करवा रहे हैं, कल को कोई चार लोग हिंदू जो जिनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का 100% अधिकार है, अगर वो लोग गुरुद्वारा के सामने आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें क्या कर लेंगे
वो तो
क्या कर लेंगे, और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको, फिर क्या होएगा, फिर हिंदू और सिख का मसला खड़ा होएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली दे वांट टू डू इट, दिस इज एग्जैक्टली दे वांट टू पुश इट। सो इसीलिए ये पुश करते रहते हैं क्योंकि ये इवेंचुअली चाहते हैं भी हिंदू और सिखों में, इसलिए मिस्टर पन्नू कहता भी हाँ सारे के सारे हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इवेंचुअली जो पोलराइजेशन हो रही है ना इसमें मैं कहता हूँ किसको क्रेडिट जाता है, 99% जो साइलेंट सिख कम्युनिटी है वो कुछ नहीं बोल रहे, इनके फेवर में तो नहीं बोल रहे ना, वो चुप करे बैठे हैं। ऑन द अदर साइड जो हिंदू कम्युनिटी को भी मैं एडमायर करता हूँ, देखो कुछ लोग होते हैं एक दो लोगों की वजह से सारी की सारी कम्युनिटी पे उग जाता है, लेकिन उनका मैं कहता हूँ भी बड़ा दिल है, समझदारी है, वो दूरंदेशी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, इसलिए हमारी जो पीस एंड हार्मनी है वो अभी बरकरार है। अदरवाइज ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे।
मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी तो आपने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट वाली बात, अभी आपने कहा कि गुरुद्वारे पे अगर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए और वहाँ पे उनका रास्ता रोकने लग गए फिर क्या होगा। अब आप इसको, ये तो बड़ा एग्जांपल हो गया, एक सिंपल सा है कि ये लोग जो करते हैं, चलो खालिस्तान की मांग कर रहे हो आप, बोलते रहो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता,
करो करो खुल
के। क्या है कि ये तिरंगे को जलाते हैं, तिरंगे के मतलब जूते के नीचे उसको घसीटते हैं और वो सब, फिर वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं।
बिल्कुल।
अब जो खालिस्तान का इन्होंने एक तो हरामीपंथी ये कर रखी है कि खालिस्तान का जो इन्होंने झंडा बनाया है उसमें
इंग्लिश में खालिस्तान लिखा हुआ है,
इंग्लिश में तो खालिस्तान है लेकिन निशान साहिब है ना उसमें,
निशान साहिब भी है ना।
अब वो तो लोग नहीं जानते ना,
बिल्कुल,
उसको उन्होंने खालिस्तान का झंडा बना दिया,
बिल्कुल,
तो वो क्या होगा अगर उस झंडे को यहाँ पे लोग चार लोग उसको जलाने लग जाएंगे,
वो जहाँ की छोड़ दो बॉस, जहाँ की करने की हो नहीं,
मतलब मैं बकाल रहा हूँ।
कोई आपको भी अगर जो भी कनेडियन अमेरिकन कोई भी है लोकल सिटीजन है उसके पास भी उतनी अधिकार है जिनका इनके पास अधिकार है,
यहाँ तो फिर भी तो में लग जाएगा।
हाँ। कल को खालिस्तान का झंडा वैनकूवर ब्रिज या सैन फ्रांसिस्को की सड़कों में गलियों में ऐसी घिसेंगे, निशान साहब पे भी बात आएगी,
तो फिर जो 99% साइलेंट सिख कम्युनिटी उनका दिल दुखेगा, फिर वो बोलेंगे, फिर जो 99% साइलेंट हिंदू कम्युनिटी है उनका दिल दुखेगा,
बिल्कुल।
तो ये पूरी की पूरी दोनों कम्युनिटी में जो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, फिर गालियां शुरू होंगी, और ये ऑनलाइन हो रहा है सर, मैं बता रहा हूं आपको, पिछले दो साल पहले आपको ये नहीं लड़ाइयां दिखती थी, हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये अब शुरू हो गया है। आप इंस्टाग्राम के पेजेस पे चले जाइए पंजाब रिलेटेड, वहां पे आप देखिए अच्छी गालियां, कोई हिंदुस्तानी बोल रहा है, कोई उसको लस्सी करके कोई बोल रहा है, मतलब ऐसे ये पोलराइजेशन कहाँ से हो रहा है
सर, यही तो है ना। इस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ के देख लेना, दो दिन के बाद आप कमेंट को उसको रिसर्च करवा लेना, इसे सोशल मीडिया की ट्विटर के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू उसको पता चलेगा भी मेजोरिटी ऑफ द जो कमेंट आ रहे हैं ना वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उन लोगों ने फेक अकाउंट क्रिएट
किया, ये तो अभी आ रहे हैं ना, लेकिन जब सारा पोलराइजेशन इतना हो जाएगा कि वो नीचे तक पहुंच जाएगा, गांव-गांव में पहुंच जाएगा, हेट्रेड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंटरमिंगल हो रहे हैं लोग, कोई गांव में पड़े हैं अपने, वो सोच रहे हैं कि ये असली हिंदू बोल रहे हैं।
इसमें गुरुपत पंत सिंह को, उसकी फैमिली को, उसके यारों दोस्तों को कोई नुकसान नहीं होगा।
हाँ,
अगर नुकसान होगा जो दिल्ली में सिख रह रहा है, बॉम्बे में, इंदौर में, यूपी में, ठीक है, और कलकत्ता में रह रहा है, जो बड़ी प्रोग्रेसिव है, वेल रिस्पेक्टेड हैं, और हमारे तख्त भी बाहर हैं, ये देखो वो गुरु साहब पैदा कहाँ हुए थे, दसवें गुरु कलकत्ता में, सॉरी बिहार में पटना में पैदा हुए थे ना, तख्त वहाँ भी है, हजूर साहब भी है महाराष्ट्र में, ये देखो। इसका मतलब जो खालिस्तान की ऐसी बदतमीजी करके भी इतने जो सिख प्रोग्रेसिव जिहड़ी सोसाइटी है जिनका इनके साथ इशू नहीं है, इसीलिए जो 1984 में इशू हुआ था, इंटरेस्टिंगली उसकी इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है, क्योंकि 1984 में सिखों को कभी सोच ही नहीं सकता था, दिल्ली का सिख सोच ही नहीं सकता भी हमारी क्या गलती है, हमें को कौन मारेगा।
हाँ, सही बात है,
क्योंकि उनको टोटली अनअवेयर, वो कहते भी ये हो क्या रहा है, वो तो उसी समय पता चला ना जो कांग्रेस के गुंडों ने आकर उनको मारना शुरू कर दिया। इसीलिए गुरुपत पंत की इसकी जो खालिस्तानी एलिमेंट बाहर बैठे हैं वो तो एयर कंडीशनों कमरे में रहते हैं, उनकी फंडिंग भी आ रही है, वो गुंडे भी हैं, उनके पास मसल पावर भी है, उनके पास सब रिसोर्सेज हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि आज तक उनके पास कोई भी बेस नहीं था, उनको कोई भी स्पेस नहीं थी, कम्युनिटी सिख कम्युनिटी नहीं देती थी। अब ये धीरे धीरे से गुरुद्वारे में कब्जा करना शुरू कर दिया। और इमेजिन करो स्टॉकटन का गुरुद्वारा वन ऑफ द फर्स्ट गुरुद्वारा इन नॉर्थ अमेरिका है, जो गदर बाबों ने जो गदर मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट करिया,
देश की आजादी लड़ने में,
करतार सिंह सराबा और वो लोग सारा कुछ छोड़कर वापस आकर उन्होंने जहां शहादत दी देश को आजाद करने के लिए, उनका गुरुद्वारे पे आज इनका खालिस्तानियों का कब्जा है। और गुरुद्वारे से फिर फंडिंग भी आती है और गुरुद्वारा फिर इतना ज्यादा सोर्स प्रोपोगंडा का सोर्स बन जाता है। एक तरफ जो गुरु ग्रंथ साहब रख लेते हैं, फिर वो गुरबानी करेंगे, पढ़ते 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 गुरबानी का सहारा लेकर भी वो खालिस्तान की बात करेंगे, रेफरेंडम की बात करेंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना, ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है। और दूसरी प्रॉब्लम मैं कहता भी ज़्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है। अगर गुरुपत मंत सिंह फन्नू एयर इंडिया को थ्रेट कर सकता है, एयर इंडिया की ऑफिस नहीं है वहाँ, एयर इंडिया का अमेरिका में स्टाफ नहीं है, कनाडा में स्टाफ नहीं है, और एयर इंडिया प्राइवेट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया खुद नहीं करती, तो इसको पुश करना चाहिए भी भैया जाकर उन लोगों को बोलो इसके खिलाफ भी उसी जस्टिस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इसके पन्नू के खिलाफ केस होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए, ये आदमी बिल्कुल अंदर होना चाहिए, जेल में अंदर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस क्रिएचर जो है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एयर इंडिया के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, कोई आम आदमी है वहाँ, इतनी महंगी होती है जो भी लीगल एड होती है महंगी होती है, इनके पास सारा कुछ है, इनके पास रीज़न है, इनके पास ये देखो ये मजाक की बात नहीं थी भी किसी उसको थ्रेट करना। अब अगर इनको करना चाहिए ये क्यों नहीं करते, आई एम टोटली क्लूलेस। और दूसरी बात, इसके पास इतना लाइसेंस आ गया, वो पहले दिन देखो एक हफ्ता पहले तरनजीत सिंह संधू जो हमारे सरदार हैं, रिस्पेक्टेड सरदार हैं, एम्बेसडर हैं वो वाशिंगटन डीसी में, जिनकी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडन पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और उसके मिस्टर तरनजीत सिंह संधू के जो फादर थे तेजा सिंह समुंदरी एसजीपीसी के, वो वन ऑफ द फाउंडर थे, और दरबार साहब में उनके नाम पे एसजीपीसी के दरवाजा जो बना हुआ है, जो हॉल बना हुआ है, तेजा सिंह समुद्री हॉल बना हुआ है, इमेजिन करो पिछले हफ्ते वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के कुछ एरिया के कुछ इलाके में तरनजीत सिंह संधू जब गुरुद्वारा गए एज ए सिख, उसका भी प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने। जे 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 ये देखो ये मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा ना बात बढ़ जाएगी, और जो मैं बोलना चाहता हूँ, और मैं हटूंगा नहीं और बोलूंगा, ये जाकर मैं कम्युनिटी में करूंगा, क्योंकि इवेंटली क्या अभी देखो ये किसी हिंदुओं को या हिंदुस्तान को या इंडिया को कोई कुछ नहीं कर सकते। इंडिया एक इमर्जिंग एक इकॉनमी है, और अमेरिका जैसे कंट्री कुछ मर्जी कर लें, बड़े बड़े कंट्री और सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ये जो कुछ बदतमीज लोग हैं, ये सारी की सारी सिख कम्युनिटी की इमेज को खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात, नॉट ओनली ये इस सके किसी के, अमेरिका के भी नहीं हो सकते। ये देखो गुरुपतवंत सिंह पन्नू कोविड के दौरान जो चाइना के मिस्टर शिपिंग है उसको लेटर लिख रहा था, कहते भी हाँ आपने जो हिंदुस्तान के जो इंडिया के जो आर्मी को जो कुछ जवानों को शहीद हुई हैं उसको एक्नॉलेज कर रहा है, भी अच्छी बात की है
2020 में। हाँ
हाँ जी हाँ उसने किया है। और उसके बाद जो देखो दो हफ्ते पहले अभी देखो, अभी आज जाकर यूट्यूब में देख लो, जो सोशल मीडिया में देखो, ये बदतमीज कुछ बंदे जो SFJ के बंदे हैं जो सैन फ्रांसिस्को में गलियों में और झंडा लेकर मोदी जी की FG लेकर वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, और कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल की कौंसुलेट के सामने। ये एक एक किसी चीज की हद होती है, ये किसी के सके नहीं हो सकते,
मतलब बेशर्मी की हद है।
हद बिल्कुल हद है, बेशर्मी भी होती है भी इसमें दिमागी तौर पे भी, क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं है इन लोगों के पास। ये जो लंडा लुच्चा लफंगा ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये जो फ्रिंज एलिमेंट थे थोड़े थे अब इकट्ठे हो गए, जिनको सोसाइटी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज ने करके भी हाँ जी हमारे काम आएंगे, इसको बोल दो इधर काम लगा दो, और जो चल रहा है।
सर थोड़ा वापस आते हैं भारत और यहाँ की थोड़े पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब को जैसे BJP की RSS की बात की, ये लोग तो जब से मतलब दशकों से यहाँ पे एक्टिव हैं, RSS भी और भाजपा भी, अब जनसंघ था उससे पहले, और कांग्रेस भी अच्छी खासी पकड़ है आज भी, कितनी कमज़ोर हो गई हो पंजाब में वो भी है। लेकिन एक 10 साल पहले आई पार्टी आम आदमी पार्टी, वो पंजाब की सोसाइटी को इतना अच्छा से समझ गई कि वो पावर में आ गई, और इस तरीके से पावर में आई कि आज तक कोई उतनी सीट जीत भी नहीं पाया, इतनी जबरदस्त। और एक तरफ से भाजपा है, वो समझ ही नहीं पाती है कि ये पंजाब में हो कैसे। कांग्रेस जहां 84 करके जीत जाती है, और ये बीजेपी वाले बिना कुछ करे सारा ब्लेम खा रहे हैं, तो ये क्या है? पंजाब को समझाइए थोड़ा कि क्या। और पंजाब में भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जो लोग प्राउड नेशनलिस्ट हैं पर वो भिंडरा वाले को संत बोलते हैं, नाम संत से ही एड्रेस करते हैं, उसको टेररिस्ट नहीं मानते, तो ये मतलब अजीब सी सोसाइटी का, थोड़ा समझाइए क्या है।
आपने मेरे को एक याद करा दिया कि गाना था मुन्नी बदनाम हुई
डार्लिंग
तेरे लिए, तो बीजेपी का हाल है ये बीजेपी मुन्नी है अकाली दल की। अकाली दल से दो सरकारें चलाई इन लोगों ने, और बीजेपी 20% की से ज्यादा इनको टिकटें नहीं देते थे। जो अकाली दल की जो गलतियां थी वो उनकी वजह से इनको भी जो बदनामी फिर मुन्नी जे भी हुए, क्योंकि जो कहते थे भी इवेंचुअली क्या मैसेज आता था, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के लोग बड़े समझदार हैं, इसमें उनको इग्नोर नहीं कर सकते भी, हाँ उनको कुछ नहीं पता, पॉलिटिकली दे आर वेरी वेल अवेयर, और क्योंकि उनको पता था भी ये मैसेज क्या जा रहा था, अभी जो स्पेशली अकाली दल की सरकार के दौरान जो अकाली दल से जो गलतियाँ हुई हैं, जो ब्लंडर उनसे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे काम भी हुए हैं, बड़े बादल साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ ब्लंडर भी हुए हैं, ब्लंडर स्पेशली गुरु ग्रंथ साहब की वेद भी है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, ना ही हम करेंगे, ठीक है ना, उनकी सरकार के दौरान हुए, और उसके बाद स्पेशली जो DGP साहब थे, जो उन जो मिस्टर कंट्रोवर्शियल ऑफिसर थे, उनको DGP लगाना, और लोगों की सेंटीमेंट से जो जुड़े हुए कुछ चीज़ें थी ना, उसकी वजह से लोगों को परेशानी थी, क्योंकि इनका जो अलायंस था फिर बीजेपी के साथ था, अकाली दल का बीजेपी के साथ अलायंस था, अभी अलायंस
सेंटर में भी वो आ गए थे,
और सेंटर में उनके मिनिस्टर थे, और जो भी कुछ होता था ऑब्वियसली सो देन गिव एंड टेक होता था, बीजेपी की तो हुई है, बीजेपी तो मुन्नी बदनाम उनकी वजह हो गई। बीजेपी का लोकल ग्राउंड पे अगर जाकर देखो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, वो बीजेपी को कोई नफरत नहीं करता, लेकिन बीजेपी का जो कैडर था उनको बढ़ने नहीं दिया अकालिया ने, वो अकालियों की स्ट्रैटेजी रही है भी, इसको कुछ लोगों को अच्छी पोजीशन दे दो, दो चार को बाकी कैडर को
मत घुसने दो,
गांव में बिल्कुल नहीं घुसने दिया, क्योंकि ये तो ज्यादा शहर में इनकी वोट बैंक था, उनको एक्सपेंड होने दे दिया, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी, वो पॉलिटिकल पार्टियों की होती है, ठीक है। कांग्रेस के बारे में आप जानती हो, ठीक है ना, कांग्रेस बहुत शरारती हैं, और इतना नुकसान करके सिखों का पंजाबियों का नुकसान करके फिर भी पावर में बारी बारी फिर सरकार बना रही है।
क्या रेसिपी है
रेसिपी? आई थिंक जो इसमें भी इस गुड क्वेश्चन, क्योंकि रेसिपी ये है भी, आई थिंक जो बीजेपी सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो समझना चाहिए, डायस्पोरा को नब्ज नहीं समझोगे ना उतनी देर सोल्यूशन नहीं होएगा। आई थिंक ये चीज़ इनको शायद कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए,
बीजेपी को।
हाँ, बीजेपी को डेफिनेटली, मैं शरेआम ऑनर कॉर्ड बोलता हूँ, ये सीखनी चाहिए को उनके पास क्या, हम कहते हैं गिद्दड़ सिंह ही थी उनके पास ना, भी जो इतना नुकसान करके सिखों का, सिख फिर भी उनके खिलाफ नहीं हुए इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए थे। अभी जो मोदी जी सरकार में आए हुए हैं, उस दिन से कितनी ज़्यादा वायलेंस, एंटी सिख, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी RS, सारा कुछ प्रोपोगंडा चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? उसका एक बड़ा रीज़न है, अकाली दल ने हमेशा कांग्रेस ने समझ कर ना, वहाँ जो डायस्पोरा में जो कुछ प्रोमिनेंट लोग थे, 5-10 ज्यादा नहीं है, 5-10 जो लोग थे उनको खड़ा किया, उनको एम्पावर किया, उनको जो लोगों के लोकल इश्यू थे वो लोकल सरकार के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, एम्बेसी कौंसलेटों के साथ मिलकर वो लोगों को काम करवाते थे। वहां लोगों का कोई भी इश्यू कंसर्न होता था, वहां लोकल लेवल पे एड्रेस हो जाता था, क्योंकि वो
पंजाब में
डायस्पोरा में
अच्छा।
क्योंकि प्रॉब्लम डायस्पोरा से पंजाब में आती है ना, जहां से पंजाब में नहीं जाती, इन्फ्लुएंस डायस्पोरा करता है ना, डायस्पोरा में बैठकर लोग करते हैं। अगर पन्नू के जो लोग आजकल पीछे काफी देर से चल रहे हैं ना, आज कोई लीडर नहीं है, अब कोई लीडर नहीं है, लोग किसके पास जाएं? फिर लोगों को कोई थोड़ी छोटी परेशानी होती है, किसी का वीजा नहीं मिल रहा, किसी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई इशू है, किसी के पास पेपर नहीं है, दिस एंड दैट, حالانکہ مودی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ہے، بلیک لسٹ بھی ختم کی، پاسپورٹ ایشو کیے، لیکن سارا کچھ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جو گیپ ہے نا اس چیز کی، وہ جو لوگوں میں رنجش ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، پنجابی کے پیشنس تو نہیں ہوتی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مودی جی کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ جو ٹیل می، آئی آن ریکارڈ کہتا ہوں، اف دیر از اینی سیکنڈ سکھی جو ہندوستان کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے میڈیم کے اوپر بھی چیلنج کرتا ہوں، دوسرا سکھی نارتھ امریکہ میں ڈھونڈ کر دکھا دو کیوں نہیں ہے۔ میں چاہتا اگر میں بولتا ہوں نا، میرے جیسے 100 لوگ ہونے چاہیے، 100 سکھی ہونے چاہیے، اگر 100 نہیں تو 50 سکھی ہوئیں گے نا تو دیش کی بات کریں گے، کمیونٹی کو جوڑیں گے، وہ تو پرابلم ہے۔ اور پرابلم، دوسری پرابلم ہے جو مودی جی کے گھر میں جو ہاسپٹیلٹی وہاں سے ڈائسپورا سے لوگ آ کر لے کر گئے تھے، جن کو کسان ایجیٹیشن کے دوران وہ ڈپورٹ کر دیا تھا، پتہ نہیں ان لوگوں نے ایک سال میں کیا کنٹریبیوٹ کر دیا، ان کو مودی جی نے جو سب سے بڑا ایوارڈ تھا پرواسی بھارتی ایوارڈ بھی ان کو دے دیا۔ یہ لوگ پنجاب کا آدمی ہیں جو پنجاب ڈائسپورا میں جو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ کہتے بھی نہیں یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات، مودی جی نے سہج یہ سمجھ کر ان کو ایوارڈ دے دیا، ابھی یہ جا کر اچھی بات کریں گے، ہماری بھی بات کریں گے، کمیونٹی کی بات کریں گے، اور لوگوں کی بیان طرف سے ایک زیرو بیان ہے آج کل، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور جا کر سرچ کر کے دیکھ لو۔ اور جن لوگوں نے اتنی ہاسپٹیلٹی پرائم منسٹر کے ہاؤس میں انجوائے کی ہے اور وعدے کیے ہیں بھی ہم جا کر ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اس نے کچھ نہیں کیا۔
کیوں؟ یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، جیسے کانگریس جو کر رہی تھی کہ وہاں پہ ان کو تھوڑا اپیزمنٹ کرنا اور وہ سب، لیکن
نہیں سر، یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ پیپل۔
اچھا مطلب دے آر ناٹ ٹرسٹنگ، دے آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دا رائٹ پیپل۔
اگر کی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ کی، آپ کی ایکسیپٹینس نہیں ہے کمیونٹی میں، آپ بول ہی نہیں سکتے، دم نہیں ہے نا، ذکر بھی چاہیے نا، ایسا تھوڑا بھی ہاں آپ کے پاس دو پیسے ہیں بھی آپ کو سارا کوئی ایکسیپٹ کر لے گا، پنجابی ایسے نہیں کرتا۔ پنجابی ایسے اس کے، وہ آپ کی ہمت دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہو، میری ضرورت ہے، میری ہمت ہے، میرا کریجیس ہے، وہ میرا مائنڈ سیٹ ہے، جو اوور نائٹ نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے میری دیکھ لو، یہ نہ کبھی اوپر گیا نہ نیچے گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لڑائی لڑیں گے، دیش کے لیے لڑیں گے، اپنی کمیونٹی کے لیے لڑیں گے، سبھی کے لیے لڑیں گے، جو سچائی ہے اس کے لیے لڑیں گے۔ اگر کسی آدمی کو اٹھا کر بھی ہاں اس کے پاس دو پیسے ہیں، کسی نے بول دیا، اس کو آپ ہائی لائٹ کرو گے، کل آدمی بھاگ گیا اور وہ سبھی لوگ بھاگ گئے، اب اس کو وہ سارا ویکیوم ہے۔ اس لیے آپ کی کوئی بات کرنے والا سکھ کمیونٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔
تو آپ کے حساب سے مین پرابلم جو پنجاب میں آتی ہے ایز اے پرابلم، وہ فلو ہو رہی ہے ڈائسپورا سے؟
ڈائسپورا کنٹرول مینج کرتا ہے سر، جتنا پیسہ آتا ہے ہر ایک گھر سے، ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی باہر بیٹھا ہے، کئی تو گاؤں کے گاؤں باہر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس دے آر ویل سیٹلڈ، دے آر آلویز کنسرنڈ، کیونکہ ہمارا صبح سے شام تک ہمیشہ ہی رہتا بھی آج کس نے کیا وین دیا، کس پولیٹیکل پارٹی نے کیا کیا، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ وی آر مور ویل اویئر ان دا ڈائسپورا، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں جو لوگ، اسپیشلی دے آر مور اویئر دین دا پیپل جو پنجاب میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے نا، جو مٹی کے ساتھ ہمارا ساتھ ہوتا ہے، مٹی کا موہ ہوتا ہے۔
تو پھر تو نریٹو جو وہاں پہ سیٹ ہوتے ہوں گے وہی فلو
ایگزیکٹلی ہوتا ہے۔ نریٹو سیٹ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا بھی گورنمنٹ کے آدمی کو اس کو کوئی، ہاں بھی کس کو پے رول پہ رکھو یا نہیں، یار اس کو عزت دو، ان کو، وہ وہاں اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کی بات سنو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو اسٹینڈ اپ کرو، وہ اپنے دیش ہیں۔ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے میں یہ تو ڈرائی نہیں کر سکتا بھی میں امیرکن، میں تو صرف امیرکن ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا، دیکھو میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی امیرکن ناؤ، کیونکہ میرے پاس سٹیزن شپ ہے، میرے بچے وہاں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی ساری میں فیسلٹی انجوائے کروں، بٹ اینڈ آف دا ڈے
کہیں نہ کہیں مطلب ڈی این اے میں تو ہے نا۔
نہیں سر، میری پیدائش یہاں ہے نا، میں جہاں کا بورن ہوں، میں نے جہاں کی مٹی میں میں نے پانی پیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے نمک کھایا ہے، میرے کو ایجوکیشن ملی ہے۔ اگر جہاں سے سارا کچھ کر کے میں امریکہ میں سیٹ ہو گیا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو میرے سے بڑا گدار کون ہوئے گا؟ میں تو جو بھارت مات کی میں کہتا ہوں کہ جو میں کوئی احسان نہیں کر رہا لڑائی کر کے، میں جو اپنا جو فرض ہے میں تو فرض پورا کر رہا ہوں، وہ فرض ہے، وہ گرو نانک دیو جی کی فلاسفی ہے، وہ سارے گروؤں کی فلاسفی ہے، وہ سکھ دھرم کی فلاسفی ہے بھی ہاں احسان کرو، خراموش نہیں ہونا، نام جپو، بند شکو، کرت کرو، یہ تین فلاسفی ہیں۔ منجان بھی چلو ٹھیک ہے، سکھی میں وشواس کرتے ہیں، میں پورن سکھ نہیں ہوں، نہ میں کبھی کلیم کروں، میں کوئی ایسا نہیں، میں کوئی فنیٹک یا کوئی ایسا کوئی امرتداری نہیں ہوں، میں کبھی کلیم نہیں کروں گا، میں میرے بھی بال کٹے ہوئے ہیں، 60-70% लोग पंजाब में रहते हैं, आजकल पगड़ी बांधते हैं, उनके भी बाल कटे होते हैं। आई एम नॉट, दैट डज नॉट मीन कि मैं उनके उनसे कम सीखूं जो अपने आप को ठेकेदार बने बैठे हैं। दाढ़ी इतनी बड़ी रख कर गोल एक दमाला बनकर या पगड़ी बनकर कोई सिख नहीं बन जाते। हो सकता है भी मेरे से आप ज़्यादा अच्छे सिख हो। बहुत हिंदू लोग हैं जो सिंधी हैं, उनके कितने, हाँ वो पाकिस्तान से आए, ऐसे कोई मध्य प्रदेश में रहता है, वो कहीं रहता है, उसकी विश्वास है गुरु गुरु नानक देव,
दादा चेला राम जी हैं सिंधी, हाँ, बहुत
और ये बदतमीजी जहाँ भी वहाँ नहीं हो रही, जहाँ भी कुछ एलिमेंट है जो जिन लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी जो करतूत इनकी क्या है भी आप सिखी से जोड़ने की बजाय वो कहते भी, हाँ वो कहते भी वहाँ इंदौर के इलाके में मध्य प्रदेश में जो सिंधी लोग थे जो इतनी जनरेशन से गुरु ग्रंथ साहब उन लोगों ने गर्भ में रखे हुए थे, कहते भी नहीं ये बेअदबी है, हमें गुरु ग्रंथ साहब उठा कर लेके गए,
महाराजा रंजीत सिंह ने उनको दी थी।
हाँ
वो
देखो यही है ना प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है भी सबसे ज्यादा जो जहर और भी घोल रहे हैं ना सिखी के प्रचारक, लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दैट वन, सिखी के जो आज के प्रचारक हैं मैनी ऑफ देम, आई विल से मेजॉरिटी ऑफ देम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रूट काज वो हैं जो नफरत वो पैदा कर रहे हैं स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ, और कोई नहीं कर रहा। क्योंकि उन लोगों को सिर्फ चार पैसे के लिए जहां अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, वहां के गुरुद्वारों में सभी लोग बैठे हैं, गुरबानी की बात करेंगे, गुरु ग्रंथ से भी बात करेंगे, लेकिन फिर जब सारी आपकी जो साहब ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया तो उस समय फिर ऐसी चोट मारेंगे भी हाँ सिखी को खतरा है, आरएसएस से खतरा है,
सारे पता नहीं जाकिर नायक बनने के कंपटीशन में चल पड़े।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी हैं सिखी की, जो ये देख लो हमारी जो पिछले 75 ईयर का इतिहास है उसको इतना गलत तौर मरोड़ कर पेश किया गया है, क्योंकि गुरबानी को तो बहुत दूर है ये लोग। अगर मेरा, अगर मैं सिख हूँ, मेरा विश्वास जो हो वो गुरु ग्रंथ साहब में है, गुरु ग्रंथ साहब में गुरबानी है, वो कितने पीर हैं, फकीर हैं, हिंदू हैं, भगत हैं, सभी की गुरबानी है, हमारे सिर्फ शेख गुरु साहब की बानी नहीं है। अगर उनको इतनी अहमियत दी गई है, हमारा मेन फाउंडेशन है जो बेस है वो तो गुरु ग्रंथ साहब है। ये गुरु ग्रंथ साहब का एक ओट लेकर फिर वो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं, साखियां सुनाते हैं जो इलॉजिकल होती हैं, जिसके आजकल क्योंकि साइंस का युग है, दो मिनट में आपको प्रूव कर दूंगा भी नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ये करामाता की बात करोगे जो करामात सिखी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये ऐसी बातें करेंगे ना फिर धीरे धीरे से। और ये देखो पंजाब में डेरावाद क्यों बढ़ रहा है आजकल, इन लोगों की वजह से ना, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरएसएस तो नहीं है ना, उस लिए तो श्रोमणी कमेटी वहाँ बैठी है ना, अकाल तख्त के जथेदार बैठे हैं, उसके लिए क्यों नहीं वो करते चैलेंज करते, उसके लिए क्यों नहीं ये डिक्टेटेशन इशू करते भी, हाँ भैया पंजाब में जैसे लगातार कन्वर्जन हो रही है, लगातार वो जो जो गुरुद्वारे भी हैं, दूसरी कोई कोई ये रामदासियों का गुरुद्वारा बन रहा है, ये रामगढ़ियों का गुरुद्वारा बन रहा है, और उनके शमशान घाट भी अलग हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं डायस्पोरा में हो रही है, ये तो सिखी की बुनियाद ही नहीं है। ये अगर श्रोमणी कमेटी को बोलना है, अकाल तख्त के जथेदार साहब को बोलना है तो इस पे बोलना चाहिए ना, ना कि भी हाँ भी हमको हिंदुओं से खतरा जा आरएसएस से।
मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इसकी सच्चाई बताऊँ आपको।
बताओ।
क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना वो जाट है, जाट सिख। अब वो एक कास्टिज्म वाला फैक्टर है कहीं ना कहीं, ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना ये दलित हो रहे हैं, इनको होने दो अच्छा है, ये एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है कि जाट सिख तो नहीं हो रहे ना, इनको होने दो, तो जो हमारा जो डोमिनेंस है ना जाट सिख का ऑन सिखी वो मेंटेन रहेगा। अब मुझे नहीं पता, ये मेरा एनालिसिस है।
आपका एनालिसिस कुछ हद तक ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसी कहता हूँ, कुछ लोगों को जो पंजाब में नहीं रहते ना, कम्युनिटी में नहीं रहते, शायद उनका बाहर से देखते हैं तो ऐसी एक नैरेटिव बन जाता है पंजाब में ऐसा हो रहा है, ये गलत बात है।
अच्छा,
जो आपकी जो कह रहे हो ना उसके पीछे एक चीज और है, जो ये जहां हद तक वो आप कह सकते हो भी जो गरीब तबका है, अंडर प्रिविलेज है, दलित भाईचारा, उसके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है उसको कन्वर्ट करने वाले जो प्रीचर है ना, आउट ऑफ फोर वो तीन सरदार है जो जट सिख है,
जट सिख, और जो सारे डेरा वाले हैं वो भी तो जट सिख,
सारे डेरा के जो 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 भी मेन डेरे हैं पंजाब के वो कौन है, वो जट सिख है। फिर आप हम कैसे कह सकते हैं ना भी ये जो सिखी की बुनियाद है, सिखी की बर्बादी है, सिखी की बेअदबी है, वो जड़ से कर रहे हैं।
फॉलोवर्स नहीं है लेकिन,
नहीं सर उनके फॉलोअर भी हैं,
लेकिन जट सिख फॉलोअर थोड़ी हैं उनके।
जितने फॉलोअर ठीक है वो जट सिख होंगे, वो एक उसके
जट सिख तो सिखी में ही है, वो वहां से नहीं हिल रहे हैं।
हाँ लेकिन
जो ये जो
नहीं जिसको शूट करता है ना, ये देखो उस वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे वो जट सिख हो, जो देखो जो अभी वो जो एक सरसे वाला साध है जो उसको बोलते हैं ना,
कौन
सरसा सरसे जो,
अच्छा सिरसे वाला, हाँ,
वो राम रहीम सिंह जो काफी
इंसान
बड़ा
और कई नाम है,
पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना, वो भी तो सिख, वो भी तो
जट सिख है,
ठीक है ना, उसका मतलब ये तो नहीं उसके फॉलोअर नहीं है। आ, और भी कितने डेराबाद पंजाब में क्यों प्रफुल्लित हो रहा है?
नहीं मैं, मेरा मतलब जनरल एनालिसिस है कि अगर एक कास्ट का किसी भी रिलीजियस मैटर्स में, किसी भी रिलीजन में अगर वो हावी होता है तो वो अपने करेक्टरिस्टिक्स को, मतलब एक कास्टिज्म का एक वो है,
नहीं सर
करेक्टरिस्टिक है कि वो मतलब दे वॉन्ट टू मेंटेन, क्योंकि वहां पर ये है कि इट्स अ पावर थिंग नाउ।
सर पावर थिंग भी होती है, डिपेंडेंसी भी होती है, इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी अगर किसी के पास किसी के ऊपर होती है ऑब्वियसली सो आपके पास अपर हैंड होता है, रियलिटी है। जट हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं भी एक जट सिख हूँ, ठीक है ना, मैं जट सिख हूँ,
दिमाग मुझे थोड़ा पता है, चाहल हो हमारे इधर भी चाहल है,
जैसे आप जाट हो मैं जट हूँ, ठीक है ना, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दियर, ठीक है आप जट हो, मैं आई एम प्राउड दैट मैं जट सिख हूँ, ठीक है। लिमिटेशन तो हम भी हैं, मैं समझता हूँ लिमिटेशन है, और इसका मतलब ये नहीं भी सारे के सारे जट सिख बुरे होंगे,
ऑफ कोर्स नॉट, हाँ, ये तो बिल्कुल ही
और
नहीं,
कुछ
है।
लोग होते हैं
बल्कि जो
कुछ लोग शरारती होते हैं, और सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारा का जो कब्जे भी आजकल डायस्पोरा में हो रहे हैं ना, और ज्यादा गुरुद्वारा जो डायस्पोरा में होते हैं उसका लीड भी जट सिख ही होता है,
लड़ने वाले भी तो जट सिख है,
गुंडागर्दी का भी आजकल जो सिख होता है वो होता है, अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं कह रहा भी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप वैनकूवर की टोरंटो की खबरें पढ़कर देख लो, दो एक छः महीने की देख लो, कितने जट सिख ड्रग में पकड़े गए हैं, कितने जट सिख के बच्चे हैं वो गैंग वार में इन्वॉल्व हैं, और कितने मोस्ट वांटेड जो आउट ऑफ 12 हैं वो सारे के सारे जट सिख।
दिक्कत ये है ना कि जो नरेटिव चल रहे हैं वो भी जट सिख वाले जो गुरुद्वारे हैं उनके कंट्रोल में है वो चला रहे हैं, तो विक्टिम भी तो वही बनेंगे ना।
बिल्कुल बिल्कुल।
और ये जैसा एक फेमस होता था, आपको तो पता ही होगा कि जब एक साइड जैसे केपीएस गिल थे तो वो भी जट सिख थे,
बिल्कुल,
और जो दूसरी साइड लड़ रहे थे वो भी जट सिख थे, तो शायद कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उनको कुछ बोला था किसी नॉन जट सिख ने या नॉन सिख ने, तो उनको बोला था तुम चुप रहो ये जट्टों की लड़ाई है,
जट्टों की लड़ाई है
ना, ये हुआ था।
नहीं पर प्रॉब्लम है भी देखो उस लड़ाई में लड़ाई किसने करवाई, पाकिस्तान का,
हाँ,
उनका
आज
उनका,
भी वही चल रहा है, हाँ, सेम गेम है,
एजेंडा तो उनका था ना, उसने बर्बादी किसकी हुई, सिख कम्युनिटी की हुई सबसे ज्यादा, नॉट ओनली सिख कम्युनिटी की हुई, पंजाबियों की हुई, और उसमें हिंदू भी उतने मरे, और हिंदू बेचारे नहत्थे मरे, जो सबसे बड़ी बात है। एक तो आदमी मेरे पास AK-47 है, मैं निकल चुका हूँ घर से भी, हाँ मैं इस मूवमेंट के साथ हूँ, मेरे को पता है मैं एक दो, ये मेरी एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है मेरे पास, 6 महीने साल में, उसके बाद मेरा भी इनकाउंटर हो जाएगा, चाहे फेक हो चाहे असली हो, उसको पता होता है। लेकिन जो बीच में से हिंदू कम्युनिटी यार बसों से उतार कर, उनका कसूर क्या था, क्योंकि हिंदू थे, RSS के लोग बेचारे शाखा लगा कर वो कर रहे हैं मोगा में, 23 को उनको मार दिया, स्टूडेंट को मार दिया, इतने जो एक स्वराज ट्रक बनता था, ट्रैक्टर बनता था, उसकी फैक्ट्री थी, उसके 30 जो इंजीनियर थे वो मार दिए, और ऊपर के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में वो सारी की सारी इंडस्ट्री चली गई पंजाब से, शुरुआत वहां से हुई, और उसके बाद बरनाला में सुरजीत सिंह बरनाला उस मिनिस्टर से, वहां उसने इंडस्ट्री लगानी शुरू करी, साउथ से काफी इंजीनियर आए थे, उनको सारे के सारे इंजीनियर को मार दिया, इंटेलेक्चुअल जो सारा था लोग इसीलिए चले गए बाहर,
और ये
उसके बाद पंजाब कभी रिकवर नहीं करा, क्योंकि जो पहले जाता था पंजाब से जाते थे लोग जाते थे डायस्पोरा में, रिस्पेक्ट का एक रीजन ये भी था, लोग एजुकेटेड जाते थे ज्यादा, लोग पढ़े लिखे जाते थे, अगर जिनके पास एजुकेशन नहीं भी है ना वो जाकर अपनी 10 नहों की कमाई करने के में विश्वास रखते थे, वो हार्डवर्क में विश्वास रखते थे, آج کل کیونکہ اسپیشلی 1819 کے بعد پنجاب کا جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ کالج کھل گئے بہت زیادہ، دکانیں کھل گئی نا، آج دیکھو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو باہر جا رہا ہے اس کے پاس ایک آئی لیٹ ہوتا ہے، وہ آئی لیٹ کو بھی ڈگری سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے آئی لیٹ بھی ڈگری ہے، وہ پھر وہاں جا کر کینیڈا میں یا امریکہ میں جا کر وہ کہیں گے ہمیں جاب نہیں ملتی۔
یہ ڈفرینس ہے سر، جو پہلے جو ڈائسپورا ہے اگر آپ اولڈ دیکھو گے، 80 سے پہلے جو لوگ گئے تھے پڑھے لکھے وہ بزنس مین بنے ہیں وہاں پہ اچھے جابس لے کے، اور جو 80s کے بعد گئے وہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے کوئی ٹرک چلا رہا ہے،
بالکل بالکل،
یہ ایک بہت بڑا
سکل سیٹ نہیں ہے نا، ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہڈ حرامی ہم بولتے ہیں، اور جو پنجاب میں جو لیٹسٹ لوگ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھی جو ہم نے ہمارے گھروں میں کھیتوں میں کام کرنا ہے ہم تو بہار سے آ کر کوئی یا یو پی سے آ کر لوگ کریں گے، ہم نے تو عیش کرنی ہے، میرے پاس تو وہ بلٹ موٹر سائیکل ہو، ہم نے تو پٹاخے پانے ہیں۔
پر ایسنشلی بات یہ ہے نا کہ جو بہاری کی سٹیٹس اور جو کام اس کا یہاں پہ ہے پنجاب میں ہے، وہی پنجاب سے جو نکل کے کینیڈا میں جا رہا ہے وہی کام وہ کر رہا ہے، وہ وہاں کا لیبر ہے، یہ یہاں کے لیبر ہیں۔
میں کہتا بھی اگر وہ بہاری کے ساتھ بھی کھیت میں کام کرتا نا، اس کو پتا ہوتا بھی محنت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج جو بہاری
شرم آتی ہے نا اس کے ساتھ بہاری کام کرنے میں،
جو پنجاب میں بہاری لوگ آتے تھے جو یو پی کے لوگ، ان لوگوں نے اپنی اتنی جگہ بنا لی، رسپیکٹ بنا لی، وہ گاؤں میں سرپنچ بھی الیکٹ ہونے شروع ہو گئے، پراسپیرٹی ان میں آ گئی، وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر کے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ تھے وہ صرف عیش پرستی میں، وہ کہتے ہیں بھی ہڈ حرامی میں پڑ گئے، کوئی محنت نہیں کی، کوئی ایجوکیشن لی، اور پھر جہاں سے جو جاتے ہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں جاتے ہیں اوبیسلی جیسے ہوتے ہیں بھی یہ تو ہم جاب نہیں ملتی، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں رہتے نا، پھر تو پھر جہاں جو اس کا خالستان کا ایشو چلتا ہے، ڈرامہ چلتا ہے، ان کے ٹریپ میں پھنستے ہیں، اور ریڈیکلائزیشن بھی انہی لوگوں کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، وچ از اے ویری ویری بگ میٹر آف کنسرن ٹو می۔
سر ہم نے بہت سیریس باتیں کر لی، لیکن آخری میں تھوڑا سا لائٹ بات کرتے ہیں۔
بالکل بالکل،
میں نے سنا ہے کہ آپ کے بہت اچھے متر بھگونت مان ہیں، تو ابھی ان کی سرکار چل رہی ہے، تو آپ کے حساب سے مطلب جو جیتی اتنی بڑی ہوئی ہے تو آشائیں بہت بڑی ہیں پنجاب میں، تو اس حساب سے کیا بتائیے آپ کے دوست کیسا کام کر رہے ہیں؟
دیکھو
کیا آپ کے دوست ہی سرکار چلا رہے ہیں یا دلی دربار سرکار چلا رہے ہیں؟
نہیں دیکھو میں تو کہتا بھی میرا گاؤں اور بھگونت مان جی کا گاؤں لائک اٹس آن دا واکنگ ڈسٹینس، وی نو ایچ ادر فار سو لانگ انف۔ امریکہ میں جاتے ہیں وہاں بھی ملتے ہیں، پہلے بھی الیکشن سے پہلے میں آتا تھا، ہمیشہ ہماری ملاقات ہوتی تھی،
بدلے نہیں الیکشن جیتنے کے بعد سی ایم
بدل گئے، اب
بدل گئے، بالکل آپ نہیں ملتے،
ہاں بدل گئے، لوگ بدل جاتے ہیں، اور جو اچھے پرانے پولیٹیشین ہیں وہ نہیں بدلتے بھی، آئی تھنک ان کا فرسٹ ٹرم تھا نا، شاید اس کی وجہ سے، اور دوسری بات ان کا بھی شاید ان کے جو آس پاس لوگ ہیں نا، کچھ لوگوں کو میں نے ریچ آؤٹ کیا تھا بھی، ٹھیک ہے یار میں آیا ہوں، میں دلی میں ہوں تو میں کسی بھی منسٹر سے مل سکتا ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں، کیونکہ میں جہاں کچھ کمپنیوں کو بھی لے کر آیا تھا، میرا ہمیشہ انٹینشن یہی ہے بھی پنجاب میں جا کر کوئی تھوڑی سی ترقی کی کوئی بات کی جائے، کیونکہ میں نے اپنے پنجاب میں آپ کے علاقے میں کافی کام کیے ہیں، میری آرگنائزیشن میری فاؤنڈیشن کے تھرو کافی کام ہوئے، جو بھگونت مان جی بھی گواہ ہیں اس چیز کے، وہ جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے بھی پالیٹکس میں، یہی ہوتا ہے یہ آدمی جب بن جاتا ہے نا تھوڑا بدل جاتا ہے۔ بھگونت مان جی الیکشن سے پہلے تو میرے کو ملتے تھے، اب ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے بھی وہ بیجی ہوں، ہو سکتا ہے بھی، میں ایسا نہیں کہتا بھی، ہاں ہو سکتا ہے بیجی ہوں، ہو سکتا ہے ان کے میسج نہ گیا ہو، لیکن اوور آل جو میں دیکھ رہا ہوں پکچر، میں دیکھوں 10 دن پنجاب رہ کر آیا ہوں، پھر میں واپس جا رہا ہوں، پھر میں 1 مہینہ رہنا ہے جہاں، اوور آل اٹ از سیڈ اسٹوری جو پنجاب کی ہے۔ دیکھو کچھ بھی ہے جو جتنی بڑی مینڈیٹ پنجاب کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو دی تھی، میرا خیال ہسٹوریکلی کسی لوگوں کو نہیں دی، اور اس الیکشن میں جو بڑے سے بڑا پولیٹیشین تھا، جو گارنٹی لے کر بیٹھا تھا بھی میں تو اتنی بار سی ایم بنا ہوں، میرے بنا سرکاریں نہیں چل سکتی، وہ بھی اکھاڑ کے پھینک دیے تھے لوگوں نے، بالکل ڈسکارڈ کر دیے تھے۔ بھگونت مان جی کو بہت اچھا مینڈیٹ ملا ہے، نو ڈاؤٹ۔ پرابلم میرے کو یہ لگتا ہے بھی اب میں جلندھر ڈرائیو کر رہا ہوں، دربار صاحب جا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، بھگونت مان جی کی ہر ایک کھمبے پہ، ہر ایک فلیکس پہ، ہر ایک پوسٹر لگا ہے، ملینز آف ڈالر جو خرچ کرے جا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ میں خرچ کر رہے جا رہے ہیں، وہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پہلے کیونکہ میں اسی لیے بھی میں ان کے ایجنڈے کو بہت اچھی طرح کلوزلی مانیٹر کرتا تھا، ये कहते थे वी आई पी कल्चर ख़त्म करना है, मेरे को नज़र नहीं आ रहा वी आई पी कल्चर ख़त्म हो रहा है बाहर से। और जो प्रॉब्लम की पंजाब की पहली प्रॉब्लम थी वो अभी थोड़ा सा अभी मेरे को उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा।
कौन सी प्रॉब्लम?
जैसे ड्रग इशू है,
ड्रग इशू
और भी काफी काफी
पेटी क्राइम काफी बढ़ गया है।
पेटी क्राइम है ना,
6-7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते।
अनएम्प्लॉयमेंट का यही होता है ना, अभी जहां अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली पेटी क्राइम तो होंगे, वो तो पंजाब में भी होंगे, पंजाब के बाहर भी होंगे। और लोगों की एक्सपेक्टेशन, स्पेशली जो लाइक माइंडेड थे, जो इनकी जो सपोर्ट भी करते थे, वो भी आई थिंक लिटिल बिट सेटबैक, वो कंसर्न है विद दे फीलिंग कि नहीं कुछ होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम, सो अभी 1 साल हुआ है, अभी देखते हैं। प्रॉब्लम जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगती है अभी, वो लोगों को बात में करके, जो दिल्ली की इंटरफेरेंस है वहाँ, जो दिल्ली की मैं कहता हूँ, जो गलत ना लेना भी, कल को मेरे को एयरपोर्ट पे रोक लेंगे।
आप भी बोल रहे हो कि आरएसएस की इंटरफेरेंस हो रही है
दिल्ली की, भी कहूँ कभी मेरे को पता चले भी आप दिल्ली के बारे में बोलते हो, भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल कर दिखाओ ऐसा मत करना। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जैसे मिस्टर केजरीवाल हैं, उन लोगों का एक विजन था, समझदार है आईआरएस ऑफिसर बहुत, उस लोगों ने जैसे जैसे जो लेकर आया था, जैसे दिल्ली में सरकार चला रहे थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी भी प्रोग्रेस होएगी। लेकिन लोगों से पता चल रहा है भी जो पंजाब में जो सरकार चल रही है वो दिल्ली केजरीवाल साहब चला रहे हैं, वो केजरीवाल, केजरीवाल साहब के जो आसपास जो एक दो और लोग हैं, प्रॉक्सी उन्हीं की है, उन्हीं के हिसाब से बस सारा कुछ हो रहा है। आई हर्ड के इवन के भगवंत मान जी भी काइंड ऑफ लाइक फीलिंग कल का हेल्पलेस है, भी वो कुछ करना चाहते हैं, फैसले लेने चाहते हैं, वो फैसले नहीं ले सकते। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी पता करके फिर मैं वो करता हूँ।
क्या लोगों में ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी और उसकी वजह से जो प्रॉमिस इतने बड़े बड़े थे, फ्री बिजली का, उसके बाद वो इतना कॉस्ट हो गया है उसका,
बिल्कुल कॉस्ट तो,
मतलब अभी 60,000 करोड़ का 1.5 साल में मतलब एक्स्ट्रा बर्डन डेट लिया,
ब्याज लिया ना, ब्याज
60,000 करोड़
इंटरेस्ट पे करने के लिए वो और कर्जा ले करना है। देखो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अमेरिका भी
सिर्फ, लेकिन अगर इन्वेस्ट करो आप इंफ्रा में, तो
अगर आपने एक खर्चे चलाने के, रसोई के खर्चे चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है ना, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न।
सैलरीज टाइम पे नहीं आती फिर लोगों की, बिजली कटेगी, फिर फ्री बिल देने का फायदा क्या?
बिल्कुल,
तो कहीं ना कहीं इस चीज के भी विक्टिम बनेंगे, अभी तो नहीं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पंजाब को ही पे करना पड़ेगा।
पंजाब के लोग, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पंजाब को व्हेन इट्स कम टू द पॉलिटिकल डिसीजन, पंजाब के लोगों को एडमायर करता हूँ मैं। पंजाब के लोग दे डोंट केयर, और वो कहते हैं भी आपको ऑप्शन जरूर देंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है, इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द कम्युनिटी और द सोसाइटी, दे विल डेफिनेटली गिव यू द स्पेस। और उन लोगों ने स्पेस दिया, मोदी जी का वेब सारी हिंदुस्तान के में चल रही थी, पंजाब भारत में चल रही थी, लेकिन वहां नहीं चली, ठीक है ना। और लेकिन लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया, क्या आप डिलीवर कर सकते हो या नहीं, और जो जैसे जो हम देख रहे हैं, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न कि जो होना चाहिए था वो नहीं अभी अभी दिख नहीं रहा। आई होप कि चलो ठीक है, 4 साल हैं, बाकी देखेंगे। और दूसरी बात है भी, थोड़ा सा भगवंत मान जी को अपने आप को थोड़ा एक्सेसिबल रखना पड़ेगा, आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम। मैं नहीं कहता भी मेरे को एनआरआई कोई भी आता है ना, आई थिंक उसका थोड़ा सा कोई चैनल होना चाहिए भी, हाँ कोई अगर कोई अच्छे सजेशन के लिए आता है, कोई हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर है देश के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है, अगर आप किसी को मिलोगे नहीं, ठीक है ना। वो तो मैं किसी को भी कहता था, वो स्माइल जी देकर कहते थे भी, नहीं आप कैसी बात करते हो, अब तो इतने बज गए, अब नहीं मिलेंगे पता नहीं मैनेजर
समझ गए
मेरे दोस्तों के बारे में, ऐसी बात नहीं, मैं शायद नहीं किसी को कहनी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे इनके पास बहुत अच्छी एक मैंडेट है। आई होप के दे विल रीच आउट टू ऑल द अदर पोलिटिकल जो पार्टीज हैं, एंड दे हैव टू वर्क, दे शुड वर्क टुगेदर। एंड सबसे बड़ी बात है, ये दे हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायस्पोरा, क्योंकि डायस्पोरा के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है,
अगर कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली,
हाँ दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। अगर वो ऐसे ही करेंगे, जैसे कुछ फ्रिंज एलिमेंट आ जाते हैं, उसको कोई काउंटर करना, वो जैसे एक कलाकार वो और भी आए थे, वो एक उसने ठाणे पे भी अटैक कर दिया था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया अभी, वो असम की
याद दिलाऊं
तो
तो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो मैंडेट मिला है उसको एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा वो मीट कर पाए, क्योंकि
आई विश हिम द बेस्ट, आई विश हिम द बेस्ट, आई विश भगवंत मान जी बेस्ट, एंड आई विश के जो जो स्पेशल मिस्टर केजरीवाल भी जो मेरी इंटरव्यू सुनते होंगे भी उसको पंजाब में ज़्यादा इंटरफियरेंस किसी का भी, इवन के पीछे भी जो जिन लोगों ने कांग्रेस ने भी करके देख लिया था, ज़्यादा इंटरफियरेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता।
लेट पंजाबीज बी पंजाबी,
हाँ पंजाब को पंजाब ही रहने दो, पंजाब पंजाब, हाँ पंजाब की जे जो लोग हैं, पंजाब की धरती है, सभ्याचार है, वो हर एक को स्पेस देता है, आपको स्पेस मिली है, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड आई होप दे कैन प्रूव इट। बाकी हम डायस्पोरा में बैठकर सभी की वो करेंगे। और सबसे बड़ी नाउ एंड ऑफ द डे टू कंक्लूड, मेरी हमेशा यही कोशिश रहूगी, बातें आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करी होगी, यू मे नॉट बी परफेक्ट, कोई भी कम्युनिटी में सारे के सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हमें बड़ा दिल करके, मैं एज ए आप हिंदू हो, मैं हमेशा मैं एडमायर करता हूँ भी, ठीक हो हिंदू कम्युनिटी में एक तो पेशेंस है, एक शांति है, एक दूरदृष्टि है भी, हाँ इतनी जल्दी वो इमोशनल नहीं होते हमारे लोग, थोड़ा हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे आई थिंक वी ऑल हैज टू थिंक लॉन्ग टर्म, जो हमारे गोल्स क्या हैं, मैं चाहता हूँ जैसे पंजाब तरक्की करे, जैसे बाकी स्टेट साउथ की स्टेट तरक्की कर रही हैं, मैं चाहता हूँ पंजाब के लोग IAS बने, IPS बने, मैं चाहता हूँ पंजाब के लोग बड़े जो अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जो और भी अच्छे अच्छे वो भी एजुकेशन पाकर, अगर बाहर भी जाना है तो थोड़ी सी कोई ना कोई स्किल सेट लेकर जाएं, ठीक है, और पंजाब का नाम, पंजाबियों का नाम, हिंदुस्तान
रोशन
का
करें, मतलब rather than
बिल्कुल बजाय के खालिस्तान बनाने को, खालिस्तान ना तो बन सकता है, अगर बन गया तो मैं तो पहले उस पे लिखा हुआ है भी
LOP
ऑफ फिक्टिशियस खालिस्तान, में
पहले क्लेम कर दिया आपने,
मेरा वो ट्विटर का मैंने पहले वो करी है भी, मैं तो खालिस्तान का लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, और फिर लोग पूछते हैं भी वो खालिस्तान बनेगा कहाँ, वो तो अल्बर्टा में के ऊपर बनेगा, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर, कनाडा में बनेगा, जहाँ भी बनेगा तो हमें वहाँ भी सीट मिलेगी।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना फ्रैंकली बात करने के लिए और इतनी सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए। डायस्पोरा पंजाब बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारे लिए ये, एंड आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू
सो मच।
नमस्कार, सत श्री अकाल।